तो इस सब में आपका स्वागत है। शिष्य गौरताय श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा से सात समुंदर पार करके सब देशों में गए, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने उनको एक खिलौने की तरह सबके घर में रखने को कहा, ताकि अगर इवन इफ एवरीबडी लुक्स एट देम एज डॉल्स, स्टिल दे विल मेक एडवांसमेंट। खिलौने के रूप में भी अगर अपने आप को हम उनकी तरफ प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे, फिर भी क्योंकि गौर निताय बहुत दयालु हैं, परम दयालु और परम परम माफ करने वाले में से परम हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने गौर निताय को देश विदेश में घरों घरों में स्थापित करने के लिए आज्ञा दी थी। गौर निताय जी का विशेषता यह है कि वे मुक्ति मुक्ति के चक्कर में पड़ते नहीं इनको बीमारी से बीमार दूर करना है, इनसे इनको धन देना है, इनको ये करना है, इनको पदोन्नति देनी है, ऐसा कुछ चक्कर में पड़ते नहीं। सीधे डायरेक्ट कृष्ण प्रेम, मुक्ति मुक्ति तो बहुत दूर रहती है, मुक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है महाप्रभु के साथ महाप्रभु जी केवल डायरेक्ट, मतलब एक होता है स्टेप्स, जैसे हम धीरे धीरे वन बाय वन आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, महाप्रभु का ऐसा नहीं। अति पापी अवस्था से अति उत्कट प्रेम की अवस्था तक एक एक ही झटके में पहुंचा देते हैं, ऐसा शॉर्टकट कोई नहीं कर सकता है, ना प्रभु रामचंद्र कर सकते हैं, ना नरसिंह भगवान कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। कृष्ण भगवान स्वयं जब अपने हाथ में लेते हैं कार्य, बहुत ही प्रेम से और बहुत ही आसानी से अति पाप की अवस्था से अति प्रेम की अवस्था में हमको डाल सकते हैं। क्या करना चाहिए उसके लिए, क्या जरूरत है? एक तो हरिनाम से लगाओ, हरिनाम से हृदय से प्रेम, और एक है वैष्णव अपराध से मुक्ति। वैष्णव अपराध से हम बचेंगे और हरिनाम से प्रेम करेंगे तो ये सब मुमकिन है। महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि एक तो मेरे भक्तों के अपराध से बचो और कृष्ण के नाम से स्नेह करो, ये दो चीज करने से अनंत प्रेम हमारे हृदय में उमड़ सकता है। इसलिए आइए हम श्री कृष्ण भगवान के कुछ ब्रज के दिव्य नामों का कीर्तन करेंगे। अपूर्व भक्ति विनोद जी इस भजन को लिखते हैं और कहते हैं कि ये गौलोक वृंदावन का साक्षात रूप है। ये जो भजन है बहुत सिंपल है, हम रोज आते हैं उसको, लेकिन हम लोग ये अनुभव नहीं करते हैं कि ये गौलोक वृंदावन अवतरित होता है उसके अंदर से। बहुत सुंदर सिंपल सा भजन है, लेकिन उससे पूरे गौलोक की अति उत्कट और संक्षेप में प्रकृति प्राकट्य होता है। तो सब लोग बड़े हृदय से गाइए, प्रेम से पुकारिए, एक एक नाम पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, उस नाम के अर्थ पर अपनी चेतना को लगाइए और सब कुछ भूल जाइए। 15 अगस्त का दिन है ना, ना आगे ऑफिस है ना पीछे ऑफिस है, कोई काम नहीं है, छुट्टी के दिन पे एक ही काम होता है, भगवान को याद करना, बस और कुछ नहीं। और योगा योग से आज भी भारत तथाकथित पारतंत्र से तथाकथित स्वतंत्र में आ गया था, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस से सो कॉल्ड डिपेंडेंस, मतलब सेल्फ डिपेंडेंस में आ गया था। भक्ति सुल्तान जी ने कहा था कि ये सब जो है ना, ये सब टेम्पररी चीज है, ये गवर्नमेंट से वो गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट, पारतंत्र से स्वतंत्र, ये सब क्षणिक चीजें हैं। आत्मा का जो स्वतंत्र है, आत्मा की भगवान की ओर जो मुक्ति है, उसकी हमें अपेक्षा करनी चाहिए और वो सबसे अर्जेंट बात है। तो आइए सब मिलकर हम श्री श्री राधा और कृष्ण को पुकारेंगे और गौर निताय को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। जय राधा माधवा कुंजा बिहारी। सब लोग पुकारिए, हृदय से पुकारिए। एक बालक जैसे अपनी माता को पुकारता है ऐसे पुकारिए, असहाय होकर पुकारिए, आश्रय के लिए पुकारिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, सभी गोपीजनों को वो बहुत प्रिय हैं और गिरिराज गोवर्धन को उठाने वाले हैं। जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदा के लाडले पुत्र हैं और सभी ब्रजवासियों को ब्रजजनों को रिझाते हैं, रंजन करते हैं। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, दिव्य यमुना नदी के किनारे वो अपना मनस्थ विहार करते हैं, गज के बनों में भटकते हैं, गज के भूमि को पालन करते हैं। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 हे राधे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nam Hare Nam Saro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Hey Gopal Hey Govinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Jai Om Vishnu Pada Paramaham, Saparibhaja Kacharya Stotara Shata, Sri Srimati's Divine Grace, Abhaya Charanarvinda Bhakti Vedanta Goswami Maharaja Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Sri Sri Gaur Nithai Ki, Sri Sri Radha Partha Sarthi Ji Ki, Nithai Gaur Primanande, Sri Vrindavan Dhama Ki. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्री गौनिताई श्री कृष्ण बलराम कलयुग में अवतार लेते हैं और जन सामान्य सबसे पतित से पतित भी हो या उन्नत से उन्नत भी हो, सब लोगों को जो परम प्राप्ति है पंचम पुरुषार्थ प्रेम अर्थो भाव उसका लाभ देने का प्रयास करते हैं। जब राधा रानी को यशोदा मैया ने चंदन हल्दी लगाई हाथ में, बहुत लंबी कहानी छोटी करेंगे उससे, तो राधा रानी बड़ी खुश होकर बरसाना लौटी नंदगांव से। नंदगांव से जब वो हल्दी लगाया गया तो उसका मतलब ये हुआ कि राधा रानी को अभी यशोदा मैया ने कृष्ण के लिए वधु के रूप में चुन लिया है। भाव में आ गई, बहुत बहुत वात्सल्य भाव में, बहुत प्रेम भाव में, अपने आप को रोक नहीं पाई और प्रेम से राधा रानी के हाथ को हल्दी लगाई। राधा रानी जब वहां से लौटी बहुत खुश थी सखियों के साथ, लेकिन जब बरसाने की सीमा में आई तो उनको होश आया कि मैया क्या कहेगी, बाबा क्या कहेंगे, बरसाना वासी क्या कहेंगे। लड़की खुद गई और अपना एंगेजमेंट करके आई, ऐसा तो कोई रिवाज नहीं था। बहुत संकोच में आ गए, वो दुखी हो गए, क्या करें, यहाँ को क्या जवाब दें। तो ललिता जी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर जो प्रिया कुंड है आपका कुंड है, यहाँ पर आप स्नान करते हो रोज, इसी में हाथ धो लो और हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो राधा रानी ने इसको उचित समझा, अभी संकट का समय है तो कोई बात नहीं, वो जो उपाय चलेगा वो चला लो। पूरी तरह से हाथ धो लिए और सब लोग अपने अपने घर चले गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह जब ब्रजवासीगण उस कुंड पे अपना नित्य कर्म करने के लिए आए, स्नान करने के लिए, देखा तो पूरा कुंड जो है वो पीला हो चुका था। और ब्रजवासी बहुत होशियार होते हैं, जैसे 2 × 2 = 4 जोड़ लेते अच्छी तरह से। हाँ, उनके मन ही मन में उन्होंने पूरी कहानी बना ली अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। वो जैसे कपड़ा वस्त्र बुनते हैं ना हम लोग, ऐसे अच्छी तरह से गांठ मार मार के प्रेम से कपड़ा बुनते हैं, वैसे उन्होंने पूरी कहानी बुन ली ठीक तरह से। तो आगे आ जाए, सब आ गई और आ गई, रास्ता छोड़ गई। तो सबने क्या सोचा कि रोज तो राधा रानी जा रही है नंदगांव से, नंदगांव में कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए, तो सबके दिल में यही बात है। हाँ, ब्रजवास ब्रज में जितने भी वन है, जितने भी गांव है, सबके हृदय में एक ही बात है कि राधा का विवाह कृष्ण से होना चाहिए। तो यही बात तो यशोदा के मन में भी होगी ना, अगर हमारे मन में है, आपके मन में है, तुम्हारे मन में है, तो उनके मन में भी यही बात होगी। और रोज देखती होगी कि हमारी बहू कब होगी, कब होगी, कब होगी। तो एक दिन भाव विभोर हो गई होगी और हाथ में हल्दी लगा दिया होगा, फिर उसको संकोच हो गया होगा, इसलिए उसने हाथ धो दिए होंगे। बढ़िया बात है, बहुत हमारे मन की बात जो है पूरी हो रही अपने आप ही। सबने कहानी बुन ली अच्छी तरह से और सीधे गए कीर्ति मैया के पास। अरे हमने सुना कि तुम्हारे श्री जी का शाम के साथ में भाग निश्चय हो गया है। वो क्या, ये क्या कह रहे हो आप लोग, पूछ लो अपनी कन्या से पूछ लो। तो कन्या को बुलाया, वो तो झूठ तो नहीं बोल सकती ना, जो क्या आपका भाग निश्चय हुआ है। तो यशोदा मैया ने भाव में आकर मुझे गले लगाया और मेरे हाथ में हल्दी लगा, क्या करूं मैं, असहाय हो गई। मनी मन में खुश थी हो, लेकिन फिर भी असहायता दिखा रही है। सब लोग खुश हो गए, कीर्ति मैया भी खुश हो गई, तो राधा रानी भी बहुत तसल्ली हो गई, कोई गुस्सा नहीं किया हमारे। तो उन्होंने एक भंडार खोला मोतियों का और वो भेज दिया। तो उन्होंने वहां पर कृष्ण भगवान ने मोतियों की खेती की और वो खेती में जो उगे मोती उसको गाड़ी में डालकर, बैलगाड़ी में डालकर भेज दिए। फिर राधा रानी ने उस मोतियों के द्वारा रत्नों की खेती की रत्न कुंड में और वो रत्न गाड़ा भर के भेज दिए। एनीवेज ये कथा तो रहेगी, लेकिन इस घटना के कुछ ही दिन बाद कृष्ण भगवान व्याकुल होकर राधा रानी को ढूंढते ढूंढते बरसाने आ गए और इस कुंड के पास आ गए। इस कुंड के पास आ गए तो एकदम भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने आप को पूछने लगे कि ये पीली वस्तु क्या है, मतलब ये पीला रंग जो है, येलो सब्सटेंस, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस, क्या है ये पीली वस्तु, क्या है, अपने आप को पूछने लगे। हाँ, अपने आप में स्वागत। और धीरे धीरे वो सीढ़ियां जो है घाट की, प्रिया कुंड की, उतरने लगे। पहले एड़ी तक पानी, फिर घुटने तक पानी, फिर कमर तक पानी, छाती तक पानी, ऐसे उतरते गए उतरते गए। दोनों हाथ उठाए हुए हैं और पूछ रहे हैं ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। और वो आवाज जो है पूरी वातावरण में गूंजने लगा, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। और अंदर चले गए पानी के। कुछ देर बाद में पानी के ऊपर केवल दो पंजे थे, ऐसे हाथ वाले, दो हाथ और एक मोरकम, मोर पंख बीच में। ये तीन वस्तुएं पूरे कुंड में घूम रही है और सारे वातावरण में एक ही आवाज गूंज रही है, ये पीली वस्तु क्या है। ये आवाज सुनकर सभी ब्रजवासी लोग वहां पर आते हैं। तो किसकी आवाज आ रही है, सब इकट्ठा होते हैं वहां पर प्रिया कुंड के आसपास और ये बोलते जा रहे हैं ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। कुछ देर बाद बाहर निकलते हैं, हाँ, दोनों हाथ और मोरपंख जो है ऐसे बाहर निकलते हैं। फिर कृष्ण का मुख कमल निकलता है, फिर बाजुएं निकलती हैं, कृष्ण भगवान तुरंत पूरे बाहर निकलते हैं तो पूरे वो गौर वर्ण के, पीले वर्ण के हो जाते हैं, जैसे कि तप्त कांचन हो, हाँ, स्वर्ण जो होता है ना तप्त जला हुआ, जलता हुआ। तो वो पूरे जो सांवले रंग के थे वो पूरे पीले रंग के हो गए और फिर भी पुकारते रहे कि ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, क्या है ये पीली वस्तु, कोई जानता है क्या, कोई जवाब दे सकता है भगवान को ये पीली वस्तु क्या है, पूछ रहे हैं वो। ये वही प्रेम है जिसके लिए वो भूखे रहते हैं हमेशा, हाँ, राधा रानी का प्रेम है, राधा रानी के प्रेम का रंग है। तो इस लीला के माध्यम से कृष्ण भगवान ने सबसे पहले इस चतुर्युग कल्प में सबसे पहले यह ऐलान किया कि मैं आने वाला हूं इस रूप में। क्योंकि जब उन्होंने इस पीले रंग को धारण किया प्रिया कुंड में उतरकर, तो उन्होंने मोबाइल को बंद करना पड़ेगा। तो इस पीले रंग को धारण करके उन्होंने उस दिव्य प्रेम का अनुभव किया जो राधा रानी कृष्ण के लिए अपने हृदय में रखती है। उस प्रेम को उन्होंने अनुभव किया, वो भाव विभोर हो गए। उसके पश्चात जब कृष्ण का गोविंद कुंड में अभिषेक किया हुआ, जब देवताओं ने किया इंद्र के नेतृत्व में, उसके बाद ग्वाल बालों ने भी किया बहुत सिंपल तरीके से, तो उसके बाद में राधा रानी का भी अभिषेक किया गया इमली तला में। सब गोपियों ने सोचा कि कृष्ण को गोविंद के रूप में यहाँ पर घोषित किया जा रहा है, हम आपको वृंदावनेश्वरी के रूप में घोषित करेंगे। उनका अभिषेक किया गया, वो वृंदावनेश्वरी के रूप में घोषित किया गया। उस पेड़ के नीचे, इमली तला के नीचे, रास लीला को छोड़कर जब गोपियों को अभिमान हुआ कि मेरे साथ ही नाच कर रहे हैं, मैं इतनी स्पेशल हूँ, सभी गोपियां सोचने लगी कि वो सबको छोड़कर केवल मेरे साथ नृत्य कर रही, मुझमें ऐसी कोई विशेष बात होगी जो सबको छोड़कर मुझमें अकेले के साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन वो सबके संग में नृत्य कर रहे थे और एक एक गोपी इतनी भाव विभोर थी, इतनी मशगूल थी कि उसको लग रहा था कि केवल मेरे साथ में है, बाजू में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इतने वो एब्सॉर्ब थे। तो ये जब गर्व सब गोपियों के मन में उत्पन्न हुआ, सबको लगा कि मेरे साथ में, भगवान को गर्व जो अच्छा लगता नहीं, गर्व होते ही भगवान दूर चले जाते हैं। आचार्य बताते हैं कि जब हम होता है ना अहम, तो भगवान दूर चलते हैं, तो अहम नहीं होता है भगवान तुरंत पास में चले जाते हैं। हम के विरुद्ध क्या है, नम्रता। जैसे नम्रता आती है तो अनेक दुर्गुण होने पर भी ठाकुर जी जो है बहुत पास में चले जाते हैं, और एक एक गुण नम्रता के आधार पर सारे दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं। ऐसी शक्ति है नम्रता के अंदर। तो भगवान अंतर्धान हो गए सभी गोपियों से एक झटके में, और सभी गोपियां व्याकुल हो गई, एक दूसरे से कहने लगी कि मेरे संग थे, अकेले के संग थे, तो सब लोग यही कह रहे थे कि मेरे भी संग थे, सब लोग कह रहे हैं मेरे भी संग थे, तब वो समझ में आया कि वो सबके संग थे। तब वो चूर चूर हो गई, बहुत दुखी हो गई। और जब भगवान अंतर्धान हो गए तो भी उनको भी, भगवान को भी राधा रानी और गोपियों के संग को छोड़कर कोई सुख नहीं हुआ, वो भी दुखी हो गए। और विरह की भावना में राधा रानी को सोचते हुए, उनके बारे में विचार करते हुए उसी पेड़ के नीचे आके बैठे, वृक्ष के नीचे जो इमलीतला का वृक्ष है। और वहां पर राधा रानी के ध्यान में इतने मग्न हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि वो सांवले रंग के जो कृष्ण हैं वो गोरे रंग के बन गए, मतलब तप्त कांचन बन गए। और यहां पर ढूंढते ढूंढते राधा रानी और गोपियां सब आ गई, कहाँ हैं कहाँ हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तो देखिए तो पेड़ के नीचे एक अद्भुत व्यक्ति बैठे हैं, दिखते हैं कृष्ण जैसे लेकिन रंग गौर वर्ण है, कृष्ण का तो सांवला रंग है, तो ये कौन व्यक्ति है। बहुत उन्होंने सोचा उसके बारे में, बहुत तर्क वितर्क किया, चर्चा किया उसको। राधा रानी ने हिम्मत करके उसके पास गई, उनको स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया तो कृष्ण पूर्व जैसे हो गए, धीरे धीरे उनका गौर वर्ण जाता गया और सांवला वर्ण आता गया। और फिर वो समझ गए कि ये कृष्ण ही है। तो राधा रानी ने पूछा कि ये तुम्हारी ये कौन सी लीला है, ये तो पहले कभी देखा नहीं था हमने। उन्होंने कहा कि तुम्हारे विरह में, तुम्हारे बारे में मैं जब सोच रहा था तो मुझे इतना आनंद की प्राप्ति हुई कि मैं तुम्हारे जैसा ही बन गया, तुम्हारे वर्ण को स्वीकार करके तुम्हारे जैसे ही बन गया। और मैंने उस अवस्था में इतने भाव की अनुभूति की कि मैं अभी वादा करता हूँ कि अगले युग में मैं इसी भाव को लेकर आऊंगा। और ये भाव का जो सार है प्रेम का, वो पूरे विश्व को बांटूंगा, सबको वितरण करूंगा इस भाव का। आज मैंने उसको अनुभव किया है और मुझे इतनी आनंद की प्राप्ति हुई है, तो मैं इसी भाव को कलयुग में आकर सभी लोगों को बांटूंगा हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो राधा रानी ने कहा कि अगर मेरे भाव को स्वीकार करोगे तो पागल हो जाओगे, अपने आप पर काबू खो बैठोगे, पत्थर पर गिरोगे, कंकड़ पर गिरोगे, पानी में गिरोगे, यहां से गिरोगे, वहां से गिरोगे, तो मुझे सह नहीं जाएगा, मैं सह नहीं सकूंगी उसको। इसलिए मैं आपको मेरी कांति से ढक दूंगी ताकि आप जहां पर गिरोगे आपको जख्म नहीं होगा। तो राधा रानी ने उनको अपनी कांति से ढकने का वादा किया, अपनी गौर कांति से। और फिर और एक कथा है, जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया और फिर पश्चाताप किया, फिर भगवान की स्तुति की, फिर भगवान ने उनको डांटा, थोड़ा माफ किया, स्तुति भी सुन ली। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके जाने लगे अपने ब्रह्मलोक में, तभी भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैंने इतना अपराध किया, मैंने उनको उनकी लीला में सहायता करने के बदले में उनकी लीला में बाधा डाली, उनके प्रिय सखाओं से उनको विरक्त कर दिया, मैंने अलग कर दिया, वियोग कर दिया उनका। तो उनको पश्चाताप, उनको पूरा नहीं हुआ, उनको तसल्ली नहीं हुई। तो वो हंस पे उड़े और फिर उतरे पृथ्वी पर, और एक जगह पर उन्होंने इतना रो रो के तपस्या किया, मतलब पूजन किया, भगवान का भजन किया पश्चाताप में, कि मेरे ये ब्रह्मा की जो स्थिति है, जो पद है, क्या फायदा है इसका, कि मेरे पद से अगर मुझे अहंकार होकर मैं मेरे मालिक को ही अगर उनका ही परीक्षा करूंगा, तो कैसा पद है ये, भ्रष्ट पद है ये पद से अगर मुझे मालिक से, स्वामी से प्रेम बढ़ता है, सेवा बढ़ती, तो इस पद का कोई वैल्यू है। लेकिन इस पद के कारण अहम उत्पन्न होता है और मैं अपने स्वामी को ही अगर जचूंगा और परीक्षा करूंगा उनकी, तो ये पद नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं कि मैं इस पद के वजह से मैंने भगवान को अपने भक्तों से अलग कर दिया है। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा रूप मिले इसका कोई पद ही ना हो, कोई वैल्यू ही ना हो उसकी, वैल्यूलेस, एकदम तुच्छ जीव बनूं मैं, और उस तुच्छ अवस्था में मैं ठाकुर जी की लीला में कुछ सहायता करूं, कुछ सेवा करूं अपनी, तुच्छ क्यों ना हो लेकिन कम से कम उनका बाधा न डालूं उनके अंदर। ऐसे भाव से उन्होंने वहां पर तपस्या किया। ये भाव बहुत जरूरी है। हम सब लोग कैसे होते हैं, हमारे पद के अभिमान से इतने चूर रहते हैं कि सत्य को भूल जाते हैं। जब अभिमान होता है ना तो हमारी चेतना ढक जाती है और हम जो ढकते जिससे ढक रही है हमारी चेतना उसी के अनुसार बर्ताव करने लगते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं वैसा ही हूँ जो मैं समझता हूँ। और जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये जो अवस्था है इसको भूल जाते हैं, जो मैं नहीं हूँ वो समझता हूँ और उसके अनुसार काम करता हूँ, तो भगवान दूर चले जाते हैं। फिर वही बात है वापस, किसी भी चीज का अहंकार हो, पद का हो, धन का हो, सुंदरता का हो, विद्वत्ता का हो, बल का हो, ज्ञान का हो, वो भगवान दूर चले जाते हैं। तो फिर भगवान ने उनकी सच्ची भावना को देखकर उनको उस जगह पर दर्शन दिया जहां पर वो भजन कर रहे थे। और वो क्या दर्शन था, उन्होंने गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन दिया। जब पृथ्वी पर कृष्ण लीला चल रही थी, भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर लीला कर रहे थे गोकुल में और वृंदावन में, उस समय उन्होंने उस जगह पर गौरांग महाप्रभु के तप्त कांचन गौरांग के वर्ण के सुंदर दर्शन दिया उन्होंने। वो जगह थी मायापुर, वो जगह थी नवद्वीप मायापुर, जहां पर वास्तव में अगले युग में भगवान अवतरित हुए। उसी जगह पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आऊंगा अगले जन्म में, इसी जगह अवतरित होऊंगा, गौर वर्ण से आऊंगा और हरि कृष्ण महामंत्र को सब लोगों को वितरित करूंगा, तब तुम यवन बनकर आना। यवन मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर यवन, फिर म्लेच्छ, फिर चांडाल, फिर हम सब लोग। तो यवन मतलब जो मांस खाते हैं, म्लेच्छ मतलब जो सुअर का मांस भी खाते हैं, चांडाल मतलब जो कुत्ते का मांस भी खाते हैं, और उसके बाद में सब लोग आते हैं जो बाकी सब भी खाते हैं, चाइना, हांगकांग, फिलीपींस, थाईलैंड, तो वो भी इतने सुंदर अवसर पर बताने की जरूरत नहीं क्या क्या खाते हैं, लेकिन है लोग। उसके नीचे भी बहुत सारी, वो बोलते ना भगवान ने कुछ बनाया कैटेगरी और हमने उसमें ऐड किया, उसमें जोड़ दिया बहुत सारा चीज। ये भगवान आपको पता नहीं था, ये देखो हमारे पास और भी कैटेगरी है इसके, लेकिन नीचे है उसके, ऊपर नहीं है। तो तुम यवन बनोगे, तुम्हारा नाम हरिदास होगा, मुसलमान कुल में जन्म लेने के पश्चात भी तुम्हारे मन में नाम के प्रति इतनी आसक्ति होगी कि तुम नामाचार्य के रूप में जाने जाओगे। तो फिर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, उनकी तो पश्चाताप की भावना थी उसको पूरा भगवान कृपा का फल मिला और फिर वो अपने धाम में चले गए ब्रह्मलोक में। तो ये तीसरा प्रमाण है, भगवान ने महाप्रभु बनने का ऐलान किया। फिर और एक लंबी कहानी है, पार्वती जी ने महाप्रसाद की अपेक्षा की थी, वो नारद जी को प्राप्त हुआ, फिर उसने शिव जी को दिया, शिव जी नृत्य में बेहोश हो गए और पार्वती को महाप्रसाद देना भूल गए विष्णु का। तो पार्वती जी ने कहा कि आपने मुझे याद भी नहीं किया, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, महाविष्णु विष्णु जी का महाप्रसाद नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ है, और आपको मिला और आपने मुझे याद नहीं किया, तो मैं तपस्या करूंगी और वो महाप्रसाद प्राप्त करूंगी, और अकेले प्राप्त नहीं करूंगी, सभी मेरे बालकों को जो इस दुनिया में फंसे हुए हैं उन सबको बांटूंगी। तो उन्होंने तपस्या किया, उनकी तपस्या के पश्चात फल के रूप में गौरांग महाप्रभु के रूप में परम भगवान अवतरित हुए और पार्वती जी ने उनके चरणों की धूल अपने मांग में भर ली, और वो थे गौरांग महाप्रभु। और जगह थी सीमांत द्वीप, जो अंतरद्वीप से मायापुर से थोड़ी सी आगे। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा महाप्रसाद अभी सबको दूंगा हरिनाम संकीर्तन के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम सबको इस गौरांग महाप्रभु की जो कृपा है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि गौरांग महाप्रभु एक है गोलोक धाम, गोलोक धाम के अंदर बहुत प्रेम है भगवान के लिए, भगवान के भक्तों में भगवान के भगवान का उनके प्रति, उनका भगवान के प्रति ऐसा दिव्य प्रेम है, अनोखा और दिव्य प्रेम है। और उस दिव्य प्रेम में भी कई स्तर हैं, कोई शांत रस है, कोई दास्य रस है, कोई साख्य रस है, कोई वात्सल्य रस है, फिर माधुर्य है, फिर माधुर्य की उत्कंठा है, उसकी पराकाष्ठा है, राधा रानी का प्रेम है, बहुत सारा आगे 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 जैसे रामानंद राय के संवाद में प्रकट होता है। तो हम देख सकते हैं कि उसका जो परमोच्च स्थिति है प्रेम की माधुर्य रस में, वो परमोच्च स्थिति जो है वो प्रकट होती है रास लीला के माध्यम से। मतलब गौलोक धाम में भी सब उच्च है, लेकिन उच्चतम है, उच्चतमोत्तम भी है, ऐसा ऐसे आगे आगे उच्चतमता बढ़ती जाती है। तो उसकी जो उच्चतमता है वो गौलोक में रास लीला के रूप में प्रकट होती है। मतलब सबसे श्रेष्ठ आनंद जो है, जो भगवान अपने भक्तों पर जता सकते हैं और भक्त अपने भगवान पर बचा अनुभव कर सकते हैं, उसकी पराकाष्ठा जो है वो रास लीला है। और उसको प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, संत लोगों को वो दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, हाँ, और बहुत दुर्लभ है, ये अति दुर्लभ है। वो शिवजी भाग भाग के आए थे, उनको भी रोक लिया गया, लक्ष्मी जी आई तो उनको भी रोक लिया गया, उनसे लक्ष्मी को भी प्रवेश नहीं है, देवताओं को प्रवेश नहीं है, सभी सामान्य साधुओं को प्रवेश नहीं है, केवल माधुर्य भाव में जो पराकाष्ठा में है उन्हीं को केवल उधर प्रवेश मिलता है। गौलोक में भी सखा लोग वहां प्रवेश नहीं कर सकते, गौलोक में होने पर भी ऐसा जो अत्युच्च आनंद है, उस आनंद को जो बहुत लोगों के लिए दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को प्राप्त है, ऐसा आनंद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के शब्दों में, उसके ध्वनि में पैक कर लिया। क्योंकि भगवान ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते ऐसा काइंड का पैकिंग जो है ना, इस तरह का पैकिंग वही कर सकते हैं, हा? कि वहां का आनंद इस ध्वनि में, अपने नाम के ध्वनि में उसको ठीक तरह से उसने उन्होंने अरेंज किया, उसमें पूरा प्रेम भर दिया, और वो प्रेम जो हरे कृष्ण महामंत्र में उन्होंने डाल दिया, वो स्वयं अपने हाथों से वितरित करने के लिए वो खुद आए और अपने हाथों से सबको बांटा। देखो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ना, जैसे कि आपके घर में शादी है, लड़की की शादी है, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो आप बहुत लोगों को बांट देते हैं उस काम को, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ना, मेहमान जो उस कुल के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सासू जी हैं, सासरे जी हैं, वो चाला है, एकदम निकट के इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है उसको आप खुद देखते हो, खुद उनका आदर स्वागत करते हो, उनका सम्मान करते हो, उनकी देखभाल खुद करते हो, और इंपॉर्टेंट जो काम है वो खुद करते हैं। जैसे कि जो खर्चा होता है तो वो खुद अपने पास पैकेट रख के उसमें से उस दिन का खर्चा वो खुद करते हैं, क्योंकि और इम्पोर्टेंट काम है। और बाकी जो बाकी सारे इम्पोर्टेंट काम, जो छोटे छोटे काम हैं, वो सबको बात देते हैं और देख रेख करते हैं उसके ऊपर। तो ये इतना महत्वपूर्ण कार्य था कि उन्होंने ना किसी संत को भेजा, ना किसी देवता को भेजा, हाँ किसी को नहीं भेजा, स्वयं आ गए वो। और स्वयं कैसे आए, एक सामान्य व्यक्ति बनकर आए, और दर दर पे जाकर उन्होंने हाथ जोड़ दो लोगों को ये नाम बांटा। ऐसी एक जगह जाके बैठ गए, बोला जिसको आना है आ जाओ, मैं बांटने को तैयार हूं, ऐसा नहीं, लेकर गए सबके दरवाजे पर, नित्यानंद प्रभु के माध्यम से खुद जाकर लोगों को हाथ जोड़ जोड़ कर उन्होंने विनती करके ये हरिनाम संकीर्तन सबको बांटा, और इस पृथ्वी पर सबके लिए खोल दिया वो भंडार उन्होंने। जो योग्य है, अयोग्य है, पात्रे अपात्रे, ना देखिला ना देखिला, स्थाने अस्थान, हाँ कि स्थान योग्य है, व्यक्ति पात्र है, क्या है नहीं देखते हुए, पापी है कि पुण्यवान है कि ब्राह्मण है कि शूद्र है कि यवन है कि कौन है, कि किसी का भेदभाव न करते हुए सबसे दुर्लभ वस्तु जो है, सबसे मूल्यवान और सबसे दुर्लभ वस्तु जो है वो सब लोगों को ऐसे बिना सायस बांट दी, इसका प्रूफ है जगाई और बधाई। उनके इतना पाप तो आजकल आज तक इस ब्रह्मांड में पूरे कल्प में किसी ने नहीं किया होगा। यमराज परेशान थे उस समय, उनका सारा डिपार्टमेंट जो है एकदम एग्जॉस्ट हो गया था, पूरा कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन। उनके पास कोई डॉक्टर भी नहीं था उनको साइकेट्रिक इलाज करने के लिए, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो। 24 घंटा ऑन ड्यूटी थे वो, नो रेस्ट, नो वीकली ऑफ, नो सीएल, नो पीएल, नथिंग, ओनली रिकॉर्डिंग, जगाए मदाए सीन्स, सब कबाड़, सब ऑफिस, सब स्ट्रक्चर, सब फुल हो गया था उनका। यमलोक में उन्होंने गड्ढे खोदे थे इनका रिकॉर्ड जमा करने के लिए, इतना भयंकर पापी लोग। ऐसे कहते हैं कि यमर उनके दोनों के मिलकर के एक दिन के जो पाप थे ना, वो कलयुग के सारे लोग मिलकर पूरे इतना पाप एक दिन में करते थे। तो कितना एक्स्ट्रा स्टाफ लगाना पड़ेगा उनको, ब्रह्मा यमदराज को, उनका रिकॉर्डिंग रखने के लिए। और फिर उसके बाद में रिकॉर्ड खाली रखना नहीं है, उसका दंड भी देना है उनको। कितना रिकॉर्ड रखेंगे, कितना दंड देंगे, पता नहीं कितने युग बीतेंगे उसमें ये दोनों को दंड देते हुए। ऐसे पतित दीन हीन याचारी लो, दीन हीन क्या यतचिलो, हरिनामा उद्धारी लो, तारा साक्षी, तारा साक्षी यदि जगाई मदाए, उसके प्रूफ है वो, ऐसे ही महाप्रभु जी का कृपा है। और हम लोग जब वो दिव्य कृपा हरिनाम के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है तो हम सो जाते हैं, जब करते हुए यहाँ वहाँ देखते हैं, सोचते हैं क्या है, क्योंकि बहुत कीमती वस्तु अगर फ्री में मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है ना। एक बार एक बुढ़े औरत थी ना, उसके पास वो मैंगो बेचती थी, वो बहुत बढ़िया मैंगो रोज बेचती थी, कस्टमर आते थे उसके पास। एक दिन उसको पोता हो गया तो बहुत खुश हो गए वो, उसने तो सबसे बेस्ट मैंगो लिए और बोले यार सबके लिए फ्री है मैंगो, तो कोई आया नहीं लेने के लिए, वो इतनी खुशी से बोल रही थी ले लो आज फ्री है मैंगो। सब सोच रहे थे कुछ गड़बड़ होगा, ये तो इतने बढ़िया आम आम दिख रहे हैं लेकिन वो फ्री में क्यों दे रही है, अंदर से कुछ सड़ा होगा, कीड़ा होगा, कुछ होगा उसके अंदर। तो बहुत दुखी होकर शाम को लौट के अपने बेटे के पास, जिसको पुत्र हुआ था, बोले बेटे मैंने आज प्रेम से इतना सबको आम देने का कोशिश किया, कोई आया ही नहीं। बोले माँ चिंता मत करो, कल ले जाओ उसको वापस और दुगने दाम से बेचो। तो झट से आम सब खत्म हो गए दुगने दाम से बेचने के बाद। ये क्या है, आम देने वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, लेने वाले की मति में गड़बड़ है, क्योंकि वो शंका है ना उसके मन में, संदेह उत्पन्न कर रहे हैं क्या है ये। तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई बोलेगा कि जाओ वो पीपल के पेड़ के दी पेड़ के पेड़ को शनिवार के दिन केवल 4 और 4:30 के बीच में, हाँ दाहिने से और लेफ्ट से राइट में 108 प्रदक्षिणा करो, हाँ मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। फिर 5 नारियल, 4 गुलाब के फूल और 3 चंपा के फूल अलग अलग दिशा में उसको अर्पण करना है। बोलेंगे वाह क्या बढ़िया चीज है, ये तो इसमें क्रम है, इसलिए ये कोई विधि होगी, ऐसा होना चाहिए। और बोलेगा उसके बदले में ये कुछ मत करो, अरे हरे कृष्ण मंत्र करो, अरे क्या है सब तो कुछ है ही नहीं, दम नहीं इसके अंदर, कोई कब करने का नियम नहीं है, कैसे करना है, कौन सी उम्र में करना है, क्या उसका कोई नियम नहीं है, बोलेगे कुछ मजा नहीं आएगा उसके अंदर। ये हमारी प्रवृत्ति है, उनको फ्री में बांटे ना उसको, इसलिए। तो हमारा कर्तव्य क्या है, अभी आज गौरनिताय का आगे दिन भी है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि इसकी महानता को समझे, इन्होंने जो दिया है हमको वो तो क्या चीज है उसको समझे, जिसको प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी भी विष्णु के चरण छोड़कर एक प्रकार का वो क्या कहते हैं उसको पतिव्रता से ना, वो जब मुरली बजती है तो विष्णु का चरण छोड़ के आ जाती है नीचे। एक ही ऐसी घटना है, कभी वो विष्णु का चरण नहीं छोड़ती लक्ष्मी देवी, वैकुंठ छोड़कर अपने प्रिय प्राणनाथ के चरण छोड़कर वो भाग के आते राजमंडल के पास उस मुरली की तान सुनकर, लेकिन उसको रोका जाता है आपको यहां प्रवेश नहीं है। बोले क्यों नहीं है, आपको पहले गोपी बनना होगा। अरे मैं तो लक्ष्मी हूं सारे विश्व का धन मेरे कब्जे में, मैं ही सबको धन देती हूं, नहीं नहीं आपको गोपी बनना होगा। तो ठीक है क्या करना होगा, बोले गाय का गोबर निकालना होगा, गोमूत्र निकालना होगा, फिर वो गोबर और गोमूत्र का मिक्सचर में ब्रजरज मिलाकर उस कंडे बनाने होंगे, उसको सुखाने होंगे, फिर सुखाकर इकट्ठा करने होंगे, फिर कटोरे में डालने होंगे, टोकरी में, टोकरी को सर पे धारण करते हुए घर पे डालने होंगे, फिर भोजन बनाना होगा, हाँ गाय को दूध निकालना होगा, मंथन करना होगा दही का, मक्खन बनाना होगा, मक्खन से घी बनाना होगा, मतलब ये सारे काम नहीं कर सकते हूँ, मतलब फिर प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। तो उनको ये सब काम किए बिना उसमें प्रवेश चाहिए था, इसलिए उनको प्रवेश नहीं मिला, रुका गया उनको, ललिता देवी ने भेज दिया उनको, बेलवन में गई वो और तपस्या कर रहे, कहते आज भी तपस्या कर रही है, अभी तक एंट्री नहीं मिली। सोचो आप जरा, साक्षात लक्ष्मी देवी जो विष्णु जी की सखी है, परम सखी, परम प्रिय पत्नी है वो, हाँ सब उसको कृपा प्राप्त करने के लिए ललायत रहते हैं उनसे लक्ष्मी देवी की एक कृपा दृष्टि हम पर पड़े, हमारा कुछ भला हो जाए, ये सोचते रहते हैं। वो लक्ष्मी देवी को प्रवेश नहीं मिला उसके अंदर, सभी देवतागण आकाश में देख रहे हैं, किसी को एंट्री नहीं है, वो उधर से ही उसी के तान में कुछ डांस करने का प्रयास कर रहे हैं आकाश में, कुछ फूल डाल रहे हैं ऊपर से, बल्कि एंट्री नहीं मिल रही। देखो आप कितने महत्वपूर्ण, नारद मुनि को भी एंट्री चाहिए थी नहीं मिली, फिर क्या हुआ, माधवी गोपी ने उनको कुसुम सरोवर पे दक्षिण कोने में स्नान कराया, तो नारद मुनि जो पुरुष थे वो नारद या गोपी बने, गोपी भाव में आए। तब उनको अंदर प्रवेश मिला और उन्होंने चामर सेवा किया युगल जोड़ी का। शिव जी भाग भाग के आए तो रोक लिया उनको ललिता देवी ने। शिव जी को कोई डिफिकल्टी नहीं थी, उन्होंने कहा क्या करना है बताओ। बोले गोपी बनना होगा। बोले कहाँ से बनना है बताओ। बोले जाओ मानसरोवर में स्नान करो फिर गोपी बन के आ जाओ। भागे वहां से डुबकी लगाया और फिर भाग के लौट के आए गोपी बने, गोपेश्वर महादेव कन्या बने, स्त्री बने, अपने पुरुष के अहंकार को भी छोड़ दिया उन्होंने। ठाकुर जी ने कुछ भी एनीथिंग फॉर यू, और गोपी बने और फिर उनको प्रवेश मिला है। नृत्य करने को मौका नहीं मिला, केवल प्रवेश मिला और चामर डुलाया उन्होंने। चामर डुलाते हुए दर्शन किया, यहाँ पर ऐसे किया दर्शन, ऐसे किया फिर दर्शन, ऐसे किया फिर दर्शन, ऐसे किया चामर डुलाया कोबे हेरिबो मुखा चंद्र। हाँ चामर डुलाने का सीक्रेट यही है, चामर डुलाना है और दर्शन भी करना है बीच में। तो कितना त्याग किया उन्होंने, अपनी भावना और चेतना का त्याग किया उन्होंने, तब एंट्री मिली उसको। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं, इतने के लिए बता रहा हूं कि ये बहुत दुर्लभ है। बड़े 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 जो हमारी ब्रह्मांड की हस्तियां हैं उनको भी उसमें प्रवेश नहीं मिलता है। और वो अंदर का जो सार है वो भगवान ने ऐसे युक्ति चलाई, अलग रूप धारण कर दिया, अंदर का सार को एक डाल दिया कैप्सूल के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र के, और उसको बाहर आके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको पूरा सब लोगों में। इतनी बड़ी बात है, एक खजाना है ये, तिजोरी का अंदर खजाना है, इसको लॉक करके रखा गया है, किसी को प्राप्ति नहीं है, किसी के पास चावी नहीं है इसकी। फिर कोई अंधा ही व्यक्ति उसको निकाल कर गुप्त रूप से आके बाहर सब लोग जनता को बांट देंगे तो कैसा होगा। ऐसे कुछ भगवान ने किया, सोचो आप कितना बड़ा कार्य किया भगवान ने, कितनी कृपा का कार्य। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, करुणा अवतार, प्रेम अवतार, बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, लेकिन ये कौन है, प्रेम अवतार, करुणा अवतार। इनकी करुणा इतनी है कि वो योग्य अयोग्य देखते नहीं है, सबको बांटते रहते हैं। इसलिए हम सबको इस हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये वृंदावन का धन है, वृंदावन का सार है, वृंदावन के अस्तित्व का सार है ये। इस ध्वनि रूप में बड़ी आसानी से ऐसा कर दिया उन्होंने कि आप ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है, क्षत्रिय होने की जरूरत नहीं है, बड़े ज्ञानी पंडित होने की जरूरत नहीं है, हाँ और तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बड़ा होने की जरूरत नहीं, दाढ़ी भर के बहुत बूढ़ा हो गए हैं तो मुमकिन है, ऐसा भी नहीं है, हर अवस्था में कर सकते हैं। सुंदर हो या कुरूप हो, या बहुत सुदृढ़ शरीर का हो या रोगी शरीर का हो, हाँ भारतीय हो या परदेशी हो, गोला हो या कारा हो, कोई जरूरत नहीं है, किसी भी अवस्था में ये कर सकते हैं। ऐसा प्रक्रिया भगवान ने ढूंढ के निकाला, ऐसी प्रक्रिया जो कोई भी कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं भी कर सकता है। मैं नहीं करूंगा ऐसे बोलेगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसे नहीं बोल, ऐसे बोलना नहीं आना चाहिए उसको, ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा ये बोलेगा चलेगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसे मुझे नहीं सुनना है। मुझे ऐसे बना देना है कि कोई भी कर सकता है उसको, ऐसा आसान तरीका बनाया उन्होंने। हाँ तत्रार पिता न नियमिता न स्मरणी न काला, कोई जप में नियम भी नहीं है, ऐसा बना दिया उन्होंने। और ऐसा आसान करके सबसे श्रेष्ठ वस्तु इतनी आसान करके सबको वितरित कर दिया, इतनी महान चीज है। और वही महामंत्र, वही रासलीला का परम आनंद जो है वो हमारे आचार्यों की साधना के और तप के बल से हमारे तक पहुंचता है, दीक्षा के माध्यम से। सभी आचार्यों की कृपा जो है महाप्रभु की बात, सभी आचार्यों की कृपा से वो हमारे पास माला के रूप में आ जाती है। और ले लो, क्या करना है, केवल पाप नहीं करना है, बस ज़्यादा पुण्य करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ ऐसा नहीं कि 5 बार बद्रीनाथ जाके आना चाहिए और 4 बार जगन्नाथपुरी, 3 बार रामेश्वरम, 2 बार द्वारका, ऐसा कुछ नियम नहीं है उसके लिए। केवल पाप नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और मांसाहार नहीं करना है, वैष्णवों का अपराध नहीं करना है, और भगवान के नाम जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गारंटी है, भगवान बोलते हैं एक बार लोगे ना प्रेम से तो जितने आपके अकाउंट में जन्म जन्मांतर के जितने भी संचित होंगे ना, पाप पुण्य जमा होंगे ना, एक बार कहने से नष्ट हो जाएंगे। जिसके लिए जन्म जन्मांतर तक साधुओं को तपस्या करनी पड़ती है, दान पुण्य तप ज्ञानार्जन करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा जो बैकलॉग अकाउंट है ना उसको नष्ट करने के लिए कितने जन्म बिताने पड़ते हैं, वो केवल एक बार श्रद्धा से और प्रेम से उनको पुकारने से नष्ट हो जाएंगे। फिर तो अगली बार करेंगे तो क्या होगा, एक बार करें तो नष्ट हो गया, अगले का क्या अचीवमेंट क्या है, उसके बाद केवल प्रेम की और प्रेम की और प्रेम की प्राप्ति होती रहेगी। और जो जाने अनजाने में जो होते रहेंगे तो उसको कहते हैं इनएविटेबल, उसको हम टाल नहीं सकते, सांस ले रहे तो भी जंतु मर रहे हैं, पैर से चल रहे हैं तो भी जंतु मर रहे हैं, खाना पका रहे तो भी जंतु मर रहे हैं, ऐसे जो क्या कहते हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ऐसे पाप जो है वो रोज के पैमाने पर नष्ट होते रहेंगे जब रोज जब करते रहेंगे, लेकिन वो तो सेकेंडरी इफेक्ट है उसका, प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा, प्रेम की प्राप्ति रोज होती रहेगी, लेकिन सोते सोते जब नहीं करेंगे तब कैसे मिलेगी वो, जब प्रेम आ रहा है तो नींद आ रही है तो प्रेम कैसे मिलेगा प्रेम आ रहा है तो जगह जागे रहना चाहिए ना अपने को, तब मिलेगा वो लाभ उसका। तो सबसे पहले है सतर्क, अटेंटिवनेस, ध्यान पूर्वक उसको सुनना है और कुछ नहीं करना है। कलयुग के अंदर कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई परिवार छोड़कर धन दौलत छोड़कर गुफा में रहकर अकेले संन्यास्त वृत्ति प्राप्त करके तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, या इतने सारे शास्त्र पढ़ना है, इतने प्रवचन देना है, इतना तीर्थ यात्रा होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जहां पर भी बैठे हैं वहीं बैठकर ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला बनाया है। इसलिए इनकी कृपा की जो सीमा है ना कोई समझ नहीं सकता है, हाउ मच मर्सीफुल इज, कितने दयालु हैं ये समझ नहीं सकते हम लोग, नॉट पॉसिबल ओनली, इतनी करुणा कि हमको बताया कि आप चिंता मत करो, खाली मेरे नाम का जप करो, मैंने जो भी आपको प्राप्त करने योग्य है वो सब इस नाम के अंदर डाल दिया है, पूरा फॉर्मूला, आपको सोचने की जरूरत नहीं क्या डाल दिया क्या नहीं डाल दिया, आपको केवल लेना है। जैसे आपको कोई दवा देते हैं डॉक्टर, आप पूछते हैं कौन सा केमिकल है, कितने बॉन्ड है, कितना हेक्सागन है, कितना उसका क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, हाफ लाइफ क्या है, पूछते हैं कुछ नहीं, बोलते हैं आपको चिंता मत करो वो सब हमने कर दिया, रिसर्च हमारा काम हो गया है, रिसर्च प्रूफ है, ऑलरेडी टेस्टेड एंड ओके है, आप खाली लो बस इसको, मैं बोल रहा हूँ ना, दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लो, और कुछ सोचो मत, सो जाओ, अपने आप सब काम हो जाएगा, वो क्या रहे कुछ सोचो मत, आप खाली ध्यान पूर्वक निद्रा देवी को रिटायर करके निद्रा देवी को छुट्टी देकर अटेंटिवली सुनो उसको बस, बाकी जो भी अंदर ऑपरेशन करना है वो मैं करूंगा, चिंता मत करो आप इसकी। जैसे हम लोग डॉक्टर जाते हैं डॉक्टर के पास, बोला अपेंडिक्स निकालना है, तो आप पूछते हैं क्या उसको कितना दवाई देंगे भूल देने के लिए, बेहोश करने के लिए, कितना डोज रहेगा, कितना घंटा मैं बेहोश रहूंगा, उसके बाद में कौन सा चाकू लेंगे, कैसे काटेंगे और फिर क्या करेंगे, ऐसा कुछ पूछते नहीं है, बोला आप कुछ मत करो, अपने आप को सुपुर्द करो बस खाली, फिर आपको बेहोश करना है, कब जगाना है, कब सुलाना है, हम देख लेंगे आपको, हाँ बाद में एंड में आपको जब जगेंगे ना तो अपेंडिक्स दिखा देंगे, देखो अपेंडिक्स आपके हाथ में। तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, क्या करने वाला है वो सब डॉक्टर ने पढ़ाई किया है, उससे चिंता मत करो आप खाली श्रद्धा रखो और अपने आप को सबमिट करो बस, पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक सुनो बस, ये महाप्रभु चैतन्य की हमारे लिए विनती है। और अपने भगवत स्थान को भगवत पद को भी त्याग कर वो आपके दरवाजे में आ रहे हैं और पुकार रहे हैं, हाथ जोड़कर ले लो, प्लीज टेक इट, ऐसा कोई कर सकता है क्या, उसके पास करोड़ों का धन है तो वो अनिल अंबानी समझो आपके घर में आके बोल रहा है, अनिल अंबानी प्लीज प्लीज कृष्ण खेमराज टेक 1 करोड़ रुपीज, तो खेमराज बोल रहे हैं नहीं चाहिए नींद आ रही है बाद में आओ, फिर वो इनके घर में गए बोले प्लीज टेक 1 करोड़, ऐसा होता है कभी क्या, धनवान अति जितना चाहिए और बटोरता है वो, उसके पास 2 लाख कुछ सुना अभी लिखली 2,35,000 करोड़ रुपये है उसके पास, पता नहीं कितने जीरो होते हैं उसके पास, जो गिनती नहीं आती। उसके भाई के पास अलग है, उसके खुद के है उसके अलग है, तो और भी चाहिए और भी बटोर रहे हैं हा? और हम बोलो 1,00,000 करोड़ दे दो हमारे मंदिर में, नहीं देते। और ये जो है पूरे ब्रह्मांडों के मालिक है, ये खाली ब्रह्मांड यहाँ के हैं भौतिक जगत के, फिर आगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, गिरिजा नदी है, वैकुंठ है और सब क्या क्या नहीं है, वो सबके मालिक है, ये यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं उनको, लेकिन स्वयं आ रहे हैं, नौकर को नहीं भेज रहे हैं, और आपके दरवाजे पे आकर आपको बोल रहे ले लो प्लीज टेक इट, और हम बोल रहे हैं टाइम नहीं है बाद में आओ, अभी तो हंसने खेलने के दिन है, अभी थोड़ी ये सब करने के दिन है। ये हम लोग कहते हैं। इसलिए हमारे ऐसा दुर्भाग्य और कोई नहीं है। और उससे भी दुर्भाग्य कौन है जिसको ये मिला हुआ है, जो ले चुका है और फिर भी उसको लेता नहीं है, ये उससे भी दुर्भाग्य। एक दुर्भाग्य वो है जिसको पता ही नहीं है और जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, और एक दुर्भाग्य, परम दुर्भाग्य वो है जिसको मिला है फिर भी सोता है। सब पाए उसको फिर भी वो अपने आदत पर अड़ा हुआ है। हमको ये सब दुर्भाग्य से हट जाना है, प्लीज अंडरस्टैंड, तभी हमारा मनुष्य जीवन सक्सेसफुल होगा। जब हम सारे दुर्भाग्यों को, सारे बैड लकों को सब निकाल देंगे अपने घर से, लात मार के भगा देंगे। हाँ, जैसे होता है ना, अशुभ कोई व्यक्ति घर पे आता है तो उसको डंडे मारकर भगाना चाहिए, प्रेम से नहीं, तो टिक जाएगा घर पे, वो बस जाएगा आपके घर पे। तो वैसे ही आलस्य को, ये जो भगवान के प्रति श्रद्धा न होना, आलस्य होना, और उसमें बोले लेथार्जी, उदासीन में होना, उदास है वो, हमारे पास बहुत बड़ा धन भी है फिर भी उदास है, ऐसे सब भावनाओं को त्याग देना चाहिए पूरी तरह से, कंप्लीटली, और दिलो जान से इस हरि नाम को पकड़ना चाहिए। इस छोटे से, हाँ एकदम छोटे छोटे से कलयुग के जीवन को क्या समय हमारे पास, बताओ। हाँ, कुछ ही साल में साले बाल या तो उड़ जाते हैं या तो सफेद हो जाते हैं। समय की देखो आप, यहाँ पे वहाँ देखा तो हो गया टाइम खत्म, जाने का समय आ गया। हाँ, क्या किया, कुछ है नहीं, लेकिन समय हो गया जाने का। इतने समय में अगर बहुत बड़ी प्राप्ति करनी है तो यही आसान तरीका है, और कोई तरीका नहीं, कोई योग नहीं, कोई फोग नहीं, कुछ नहीं इसके अंदर, ओनली मंत्र साधना बस, ठीक है। तो यही चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने एक भक्त के रूप में उतार लिया, उसको छन्न अवतार कहते हैं। एक भगवान जो है ना, देखो आप कितनी बड़ी बात है ये, कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति ना कितना भी छुप छुप के आएगा ना तो भी बताने की कोशिश करेगा कि मैं कौन हूं। अल्टीमेटली उसको ना अपना जो स्थिति है उसकी, उसको छुपाना उसके लिए मुमकिन नहीं होता है। मतलब वो अच्छा भेष पहन के आएगा फिर भी वो बीच में बताएगा मैं कौन हूं। और वो भगवान है जो सारे सृष्टि के मालिक हैं, फिर भी भगवत्ता को छोड़कर एक भक्त बनकर आते हैं। इतनी बड़ी बात है, देखो आप सोचो, आप जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन कृष्णस पोजिशन। अगर आप कृष्ण होते तो सब जगह टिमकी मार के घूमते कि मैं कृष्ण। लेकिन वो आ रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं तो उनका भक्त हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उनके भक्त बनने की, ऐसे बोल के आ रहे हैं, एकदम नम्र बन के आ रहे हैं। हा? तो वो भगवान जब अपने स्वयं के भक्त बनकर आए, क्यों भक्त बनकर आए, क्योंकि उनकी भक्ति करना उनकी, उनसे बढ़िया कौन सिखा सकता है। ऐसा कोई टीचर है जो उनकी भक्ति कैसे करना है उनसे अच्छा सिखा सकता है, इसलिए मैं खुद जाके सिखाऊंगा, आई विल टीच माई सेल्फ, खुद के उदाहरण से सिखाऊंगा कैसे करना है, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, हल लेक्चर नहीं दूंगा। ऐसे हमारे करुणामय भगवान जो है वो जब भक्त बनकर आए तो हमेशा वृंदावन जाने के लिए तड़पते रहे। एक भक्त को हमेशा श्री ब्रज धाम का दर्शन करने की आतुरता उसके मन में होनी चाहिए। जहां पर भगवान ने अवतार लेकर अपना दिव्य लीला प्रकट किया, श्री वृंदावन धाम परमोच्च धाम है वो, और किसी तीर्थ की लिस्ट में नहीं आता है वो, तो भगवान का घर है वो गौलोक का 84 कोस का हिस्सा है वो, तो भगवान ने गौलोक से नीचे भेज दिया पृथ्वी पर। हाँ, साधारण जगह नहीं है वो, निर्माण की गई जगह नहीं, वो इम्पोर्टेड जगह है, वहां से भेज दिया गया उसको, क्योंकि ताकि अपना अपने ही घर में भगवान अपनी दिव्य लीला को प्रकट कर सके, ओरिजिनल एकदम। हाँ, कोई ऑल्टरेशन नहीं उसके लिए, यहां से वहां गया तो चेंज हो गया, ऐसा नहीं, सेम वही गौर, वही जो दिव्य लीला है वो प्रकट करने के लिए भगवान ने उस 84 कोस भूमि को वहां से यहाँ इम्पोर्ट कर दिया पृथ्वी पर, और फिर खुद ने लिया और लीला प्रकट किया, अलग प्रकार की लीला, जो कोई नरसिम्हा भगवान, कोई राम भगवान, कोई मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वरा अवतार, कोई नहीं कर सकता ऐसे लीला। हाँ, अरे माटी को खाता है क्या, सुना है माटी खा, सुना है कभी राम भगवान माटी खा रहे हैं, नहीं, कृष्ण भगवान अपने भक्तों के चरणों के रज खा रहे हैं। हाँ, और चोर बन रहे, चोर सबके खा के मक्खन चुरा रहे हैं, चोर बनना कोई अच्छी बात है क्या बड़े आदमी के लिए। हाँ, अब सब पेपर में जाता है कि मुकेश अंबानी ने 1000 रुपये चुरा लिए, अपने नौकर के पॉकेट पगार होते ही 1000 चुरा लिया, ऐसा उनके लिए अच्छा है क्या ये, ऐसा नहीं जाना, कितनी बड़ी बदनामी की बात है, हमारे पास करोड़ों रुपया है, 1000 रुपये चुराते हो, लेकिन ये सृष्टि के मालिक है, अपने भक्तों के घर में जाकर चोरी छुपे माखन चुराते हैं, और दंड भी, उनके कंप्लेंट भी होती है, उनको दंड भी मिलता है और क्या क्या होता है उनके लिए। ऐसी लीला करते हैं भगवान से, चटपटी लीला, अपने भगवत्ता को भूल कर एक सामान्य बालक बनते, रेंगने वाले बालक बनते, रोने वाले बालक जो बादल की गड़गड़ाहट से डर जाते हैं, गुस्सा आया तो पेशाब कर देते हैं, कोई माँ गोपी के सर में माखन नहीं मिला तो वही पेशाब कर देते, और कहीं माखन नहीं मिला तो वो सोते हुए बालक, उनके बालक हैं सो रहे हैं, उसके कान में पानी डालते हैं, उसको चिमटा निकालते हैं। ऐसी सामान्य लीला जो आम बालक करते हैं वैसे लीला करते हैं वो अपने भगवत्ता को छोड़कर, और ये सब करते हुए ब्रजवासियों को अनंत आनंद देते हैं, वो दिव्य आनंद में डुबो देते हैं। इति दृक्स्वलीला भीर आनंद कुंडे स्वगोषम निमाचंतम आख्यापयंतम, आनंद के सागर में डुबो देते हैं। वो स्थान को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा व्याकुल रहते थे, तो नवद्वीप में जन्म हुआ उनका, 24 साल वहां लीला किया बाल लीला, फिर विश्व का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी, देवता जैसे गुणों वाली सुंदर विष्णुप्रिया पत्नी को त्याग दिया उन्होंने। ऐसी माता यशोदा का अवतार थी, सच्ची माता, उसको भी त्याग दिया। ऐसा नहीं कि घृणा थी उनके मन में, बहुत प्रेम था, लेकिन जो प्रेम उनको अपनी पत्नी के प्रति और माता के प्रति था, उसके करोड़ों गुना प्रेम उनको अपने जीवों पर था जो उनको छोड़कर दुनिया में कष्ट भोग रहे थे। उनका उद्धार करने के लिए निजी अवतार में क्यों ना हो, लेकिन निजी जो आनंद है उसको त्याग दिया उन्होंने और संन्यास लिया। कंटकपुर में गए, वहाँ अवतार संन्यास लिया, वहाँ से जगन्नाथपुरी गए, और वहाँ जगन्नाथपुरी में जाने के बाद में हमेशा कोशिश करते रहे कि वहाँ से ब्रज में चले जाए, क्योंकि जगन्नाथपुरी के भक्त जो थे वो होशियार थे, जब भी बोलते हम जाना है तो ये बोलते कि अरे ढोल यात्रा आने वाली है अभी, वो करके जाओ। ढोल यात्रा हम बोलते अभी तो जन्माष्टमी आने वाली है, वो करके जाओ। तो बोलेंगे झूलन यात्रा आने वाली है, वो करो। रथ यात्रा आने वाली है, वो करके जाओ। ऐसे करके करते एक साइकिल पूरा हो गया पूरा, फिर ढोल यात्रा आ गई, तो बोले ढोल यात्रा करके जाओ, अभी तो ढोल यात्रा होने वाली है। ऐसे करके बहुत झुलाया उनको उन्होंने, बहुत बहुत हर बार झुलाया कि अभी ये भी उत्सव आ रहा है उसको करके जाओ, क्योंकि उनका विरह जो है वो उन भक्तों को ये कल्पना भी सहन नहीं कर सकते कि अभी वो जाने वाले हैं तो हम कैसे रहेंगे उनके विरह में। तो फिर उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया कि मैं जाऊंगा अभी, लेकिन उनका एक प्रण था कि भक्तों का आशीर्वाद और परमिशन लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान को क्या जरूरत है, जब मर्जी निकल गए, जाने का मुमकिन था उनको, लेकिन उन्होंने, भगवान अपने भक्तों की परमिशन चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं। वैष्णव जन जो है ना वो उनको भगवान अपने से भी ऊंचा मानते हैं, अपनी पूजा से भी वैष्णवों की पूजा वो श्रेष्ठ मानते हैं। तो फिर आगे फिर वो चल पड़े, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के पीछे गए, इतने सारे भक्त जो है हजारों की संख्या में जगन्नाथपुरी छोड़कर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो भगवान ये तो क्या मुसीबत है, ये तो मुझे ब्रज का दर्शन करना है, तो ऐसा राजा की तरह गया तो क्या कैसे दर्शन होगा मुझे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा भाई भगवान ऐसे आप ब्रज में मत जाना, ब्रज में जाना है तो नम्र होकर जाना पड़ता है, तुच्छ बनकर जाना पड़ता है। ऐसे पूरे इतने साथी, इतने एसोसिएट और पार्षद लेकर जाएंगे और क्या कहते हैं गौरव के साथ में जाएंगे तो ब्रज का क्या आनंद लेंगे। तो फिर भगवान लौट के आए और प्लानिंग किया उन्होंने डिस्कस करके कुछ भक्तों से कि हम गुप्त रूप में जाएंगे, किसी को बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे पहले बोले मैं अकेले जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर जो बलराम जी के अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर ललिता देवी के अवतार हैं, कहा कि हे वन आप जब जाओगे तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर आप हरिनाम का जप करोगे, कीर्तन करोगे, हाँ एक हाथ उठाकर गाओगे दूसरे हाथ से गिनोगे, तो आपके कपड़े कौन पकड़ेगा, वस्त्र कौन पकड़ेगा, आपकी बैग आपका सामान वस्त्र कौन पकड़ेगा, भोजन कौन बनाएगा आपके लिए, तो अकेले मत जाना, किसी एक ब्राह्मण को लेके जाना साथ में, नहीं 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 एक नहीं नहीं दो को लेके जाना, एक कपड़ा पकड़ेगा एक रसोई बनाएगा। तो भगवान इस बात को मान लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं और झारखंड के रास्ते से निकलते हैं। आज जो झारखंड है ना वही झारखंड की बात करें, वो जंगल था उस समय, उस जंगल में जब वो निकले तो झारखंड में जब उन्होंने कीर्तन किया तो सारा आसमंत जो था वो पागल हो गया प्रेम से, पेड़ ऐसे कांपने लगे आनंद से कि किसी के पत्ते ऊपर चले गए, ऐसे खड़े हो गए, किसी के पत्ते झड़ गए, किसी के पत्तों से मधु निकलने लगा, कुछ पेड़ कांपने लगे, कुछ में फूल और फल भरे आए, कुछ फूल और फल भरकर महाप्रभु की ओर चले गए, कुछ पेड़ों ने दंडवत प्रणाम किया उनके, सारे जंगल के प्राणी इकट्ठा हो गए जो पारंपरिक शत्रु है एक दूसरे के, सब इकट्ठा हो गए और गले मिले। वो हिरण सिंह के गले मिल रहा है, हाँ, और भेड़िया इसके गले मिल रहा है, और हाथी उसके गले मिल रहा है सिंह के, और शेर के, ऐसा अजीब दृश्य दिखाई पड़ रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, आज भी झारखंड के अंदर उन जानवरों के पैरों के निशान है जहां पर महाप्रभु ने कीर्तन किया था। निशान क्यों है? क्योंकि जब उन्होंने महाप्रभु के दिव्य कीर्तन में भाग लिया तो उनके भाव से पृथ्वी पिघल गई, हाँ, थर्रा गई पृथ्वी। जब पिघल गई तो उनके पैरों के चिन्ह वहां पर उठे, तभी भी वहां पर हाथी के और शेर के और सिंह के और हिरण के चरणों के चिन्ह है वहां पर। फिर वहां से वो आए, रास्ते में उनको कई बार जमुना जी का दर्शन हुआ, क्योंकि तो जमुना जी आते ना जमुनोत्री से बहुत दूर तक आती हो, ब्रज तो बहुत आगे है, तो हर बार उन्होंने जमुना जी में छलांग लगाई और बेहोश हो गए वो। फिर बलभद्र भट्टाचार्य थे, उनके साथ में ब्राह्मण थे, वो उन्होंने उनको हर बार हमारा लेके आए उनको। फिर जब मथुरा आए, अभी हमारी कथा यहाँ शुरू होती है, ठीक है ना? अभी तक की वो प्रस्तावना थी, फॉरवर्ड उसको कहते हैं भूमिका, भूमिका पैदा करना। तो चैतन्य महाप्रभु जब मथुरा आए तो मथुरा का नाम सुनते ही बेहोश हो गए। ये बलभद्र भट्टाचार्य का जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत डिफिकल्ट था। ये देखो अभी किसी को साथ में चलना है, वो बार बार बेहोश होगा, तो आपके पास कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, उसको हर बार कान में एक ही दवाई देना है, हरे कृष्ण महामंत्र की, फिर जगाना है। हाँ, कभी पेड़ से गिरेंगे, कभी पत्थर से गिरेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा पेशेंट है कि पता नहीं क्या करेगा और कभी बेहोश हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। तो डिफिकल्ट काम था उनका, अपनी सेवा भी करना है, उनकी देखभाल भी करना है। तो ये मथुरा नाम सुनते ही गिर गए। फिर जमुना जी को देखा, उसमें छलांग लगाई, तो जमुना जी में बेहोश हो गए, कृष्ण की याद करते हुए, जमुना, वो जमुना तो कृष्ण की सखी है, पंचम पत्नी है कृष्ण की, ब्रज का अविभाज्य अंग है, अनंत लीलाओं का साथ दिया इसने। स्नान किया, फिर विश्राम घाट में बैठे। विश्राम घाट, अभी आपको संक्षेप में जहां जहां महाप्रभु गए वहां की भी लीला बताएंगे संक्षेप में, ताकि आपके ब्रज का दर्शन भी हो और महाप्रभु जी का भी लीला हो। तो विश्राम घाट वो जगह है जहां पर जब भगवान ने वरा रूप लेकर पृथ्वी को उठाया था, तो वहां पर पृथ्वी को अपने स्थान में रखकर भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर विश्राम घाट जमुना किनारे में विश्राम किया था। उस जगह पर जब भगवान विश्राम कर रहे थे वरा रूप में, तो पृथ्वी देवी फिर देवी बनकर वहां उनके सामने आई हाथ जोड़कर। तो वहां पर विश्राम घाट पर भगवान वराह ने देवी पृथ्वी को वराह पुराण सुनाया, आदि वराह पुराण, जिसमें पूरे ब्रज का वर्णन किया, ब्रज का पूरा गौरव सुनाया लीला स्थली के साथ। तो उस जगह पर चंद्र महाप्रभु ने स्नान किया और वहां पर बहुत जोरदार कीर्तन किया। तो वहां पर एक ब्राह्मण आया, अभी कितने लोग हैं? दो लोग महाप्रभु के साथ में हैं, उनके साथ में आए हैं। ये ब्राह्मण जो सलाम है, सनोडिया ब्राह्मण, मतलब सनोडिया जाति का ब्राह्मण, ये थोड़े निम्न जाति के ब्राह्मण होते हैं जो राजा या ब्राह्मण या क्षत्रिय का ब्राह्मण कार्य नहीं करते, वो वैश्यों का ब्राह्मण कार्य करते हैं। वैश्यों के परिवार के लिए उनका कुछ क्रिया कर्म कोई विधि होगा तो करते हैं, तो अपने आप को मतलब वो निचला जाति का ब्राह्मण समझते हैं। तो ये ब्राह्मण बहुत जोरदार नृत्य कर रहा था और इसका नृत्य देखकर स्वयं महाप्रभु अचंभित हो गए और नृत्य समाप्त होने पर पूछा कि अरे ब्राह्मण तुम कौन हो? क्योंकि इनका नृत्य में कुछ खास बात थी, ऐसा प्रेम और ऐसी भावना थी। तो बात बात में जब उन्होंने बहुत कोशिश किया जानने का, तो पता चला कि ये माधवेंद्रपुरी का शिष्य है। माधवेंद्रपुरी इनके घर में ब्रज में आए थे, तो इनके घर में जाके भोजन किया था और इनके घर में जाकर दीक्षा दिया था उनको, दीक्षित भक्त हैं। तो ये सुनते ही महाप्रभु ने तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया। ब्राह्मण को बड़ा संकोच हो गया, आप तो सन्यासी हो, सुना है आप भगवान हो, तो मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो संकोच हुआ, तो बलभद्र ने समझाया उनको कि प्रणाम इसलिए कर रहे हैं आपको क्योंकि इनके गुरु ईश्वरपुरी हैं, जो स्वयं माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, तो आप उनके गुरु जैसे हो गए, इसलिए उस भावना से आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि हम आपके घर में भोजन करने आएंगे। ब्राह्मण ने कहा नहीं 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 मैं तो उससे योग्य नहीं हूँ, तो मैं तो निचले जाति का ब्राह्मण हूँ, आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण के हाथ से भोजन करते हो। तो महाप्रभु जी ने कहा कि जो व्यक्ति माधवेंद्रपुरी का अनुयायी है उसके घर में मुझे प्रसाद देने में कोई संकोच नहीं है। और ये बात यहाँ पर ऐसे भी है कि माधवेंद्रपुरी ने स्वयं उनके घर पे प्रसाद लिया है आपके घर पे, तो मुझे उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करना ही चाहिए। तो फिर माखे भी मान गया, बोला कि ठीक कोई बात नहीं, आप हमारे घर भोजन के लिए आइए, आपका जो बलभद्र भट्टाचार्य है ये भजन बनाएंगे आपके आपके लिए हमारे घर से। बोला नहीं, माधवेंद्रपुरी ने किसके हाथ से खाना खाया था? बोला हमने बनाया था। ठीक है, आप भी हमारे लिए बनाएंगे। इस तरह से जोर देकर समझा बुझा कर जिद से महाप्रभु चैतन्य सनोडिया ब्राह्मण के घर पे गए और भोजन किया उसके हाथ से, वहां पर भी दिव्य कीर्तन किया। और सनोडिया ब्राह्मण इतना भाव विभोर हो गया कि कहा कि अभी आप जहां जाएंगे आपके पीछे पीछे हम आएंगे, आपके संग हम चलेंगे सेवक की तरह। तो कितने हो गए? दो के तीन हो गए ना। तो फिर सनोडिया ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को जमुना जी के 24 घाट पर स्नान कराया। जमुना जी में बहुत सारे तीर्थ हैं, ध्रुव तीर्थ है, अम्बरीश तीर्थ है, प्रहलाद तीर्थ है, बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान हैं, बहेती तीर्थ है। तो वो सारे तीर्थों में जमुना जी में उन्होंने स्नान करवाया और फिर वहाँ से वो निकले ब्रज की ओर अंदर। तो बहुत सब लोग जग रहे ना, एवरीबॉडी इज ठीक है, जितना आपका उत्साह रहेगा उतना मेरा उत्साह रहेगा, मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, एक बहुत सुंदर घटना हो रही है। जो आगे जा रहे हैं तो एक गाय का झुंड ऐसे आता है, और गाय का झुंड जो आता है जैसे महाप्रभु का कीर्तन सुनाई पड़ता है तो सब गाय पागल हो जाती है, सबके पूंछ ऊपर, दोनों कान ऊपर, बड़ी बड़ी आंखें करके भाग भाग के भगवान के पास आते हैं, और उनको कोई जबान से चाट रहा है, कोई अपने शरीर को घिस रहा है, कोई सब आलिंगन देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने सभी गायों को अलग अलग तरीके से आलिंगन दिया, इंडिविजुअली एम्ब्रेस एवरीबॉडी, और गाय उनको सब चाट रही है, कोई शरीर को चाट रही है, कोई पैर को चाट रही है, कोई हाथ को चाट रही है, कोई इतना प्रेम। वो ग्वाला जो था ना, ग्वाला जो गाय को लेकर जा रहा था, बहुत डिफिकल्ट हुआ उसको, कैसे हमारी गाय को छुड़वा इनसे। और महापुरुष कीर्तन कर रहे हैं, गाय सब अष्टविकारों का दर्शन कर रहे हैं उनके शरीर पे, हाँ, किसी के पूछ खड़े हो गए, किसी के कान खड़े हो गए, किसी के आंखें खड़ी हो गई, कोई स्तब्ध हो गए, कोई ऐसे भावना से विभोर हो गए सब लोग। बड़ी ही मुश्किल से इस दिव्य अवस्था में लिप्त हो गए गायों को उस ग्वाले में कर दिया और फिर वो आगे चले गए महापुरुष। उसके आगे क्या हुआ, हिरण आए, हिरण, और हिरण जो है ना वो जाती है ऐसे, तो हिरण के बहुत वो शाय होते हैं, मतलब बहुत शर्मिंदा होते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, शर्मिंदा, शर्मिले होते हैं, हाँ, आमतौर पर आसानी से इंसान के पास में नहीं आते, दूर दूर भागते हैं। लेकिन ये हिरण बड़े धीट बनकर महाप्रभु जी के पास आए और महाप्रभु जी के चरण को चाटने लगे। ये हिरण जो है ये अपने नेत्रों से भगवान का पूजन करते हैं, हाँ, कोई घंटी नहीं, दीपक नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं उनके पास, केवल नेत्रों से और भावना से भगवान के पूजन आरती करते हैं, ऐसे भागवत ने वर्णन दिया है। तो ऐसे हिरण आए, भगवान ने हर हिरण को गले लगाया, फिर बदक आए, फिर मोर आए, सब लोगों ने बड़ी निर्भयता से भगवान का संग किया, फिर मोरा ने मोरा कर उन्होंने नाच करना शुरू किया, गले को झुका झुका कर, झुका झुका कर उन्होंने आवाज, हाँ, ऐसे करके उन्होंने कीर्तन शुरू किया, साथ दिया साथ देना, फिर कोयल, हाँ, फिर मधुमक्खी, हनी बी, अलग सारे जो पक्षी है, तोता है, ड्रोन है, मैना है, सभी ने पांचवे धुन में, एक है ना आठ धुन होती है जो भगवान जिसमें गीत गाते हैं, तो पांचवा धुन में जो होता है ना रासलीला में भगवान मुरली बजाते हैं, फिर सुनो, तो पांचवे धुन में सभी पक्षी ब्रज ब्रज के गाने लगे और भगवान के कीर्तन में सहायता किया, उन्होंने साथ दिया। और यहां भी जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे और पक्षी और प्राणी उनको प्रतिसाद दे रहे थे, उस समय पेड़ों ने भी, वृक्षों ने भी बहुत बड़ा प्रतिसाद दिया, उनके शरीर पर रोमांच हो गया, सारे पत्ते खड़े हो गए और अश्रु भाए उन्होंने, कैसे, अपने पत्तों से मधु को टपका कर प्रेम के अश्रु के रूप में भाए, और बहुत सारे पेड़ कांपने लगे ऐसे, बहुत सारे पेड़ों ने अपने वृक्ष फूलों को बरसाया भगवान के ऊपर, और कुछ वृक्षों ने पूरे ऐसे खड़े थे ना, ऐसे थाड़ करके नीचे गिरकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाँ, ये सब हम लोग को पता है क्या है, सब बेकार की बातें सब। लेकिन जब भगवान आते हैं तो सभी जीवों में चैतन्य उत्पन्न करते हैं, चाहे वो सबसे अचैतन्य अचेतन जीव के न हो। जैसे पेड़ है, उसकी आत्मा भी पूरी तरह से जागरूक हो जाती है, फुल फ्लेजेड, हाँ, रियलाइजेशन। पेड़ों ने दंडवत प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, और पत्ते जो है जड़ के पत्ते, वो एकदम मुलायम हो गए महाप्रभु जी के चरणों को आनंद देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने हर एक जीव के साथ में अपने अपने अनोखे तरीके से प्रतिसाद दिया। ही रिस्पॉन्डेड टू एवरी एंड ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। फिर उसके बाद जब वो चल रहे थे तो उस समय पृथ्वी अति आनंद की तरह कारण कांप रही थी, शी वाज ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु वंडरफुल डांस एंड कीर्तन। थोड़े आगे गए तो क्या हुआ, भगवान चल रहे हैं नाचते हुए, ऐसे हाथ है ना उनके, तो उनके हाथ पे, दोनों हाथ पे क्या हुआ, एक पेड़ से एक तोता और मैना आकर बैठ गए। भगवान को आश्चर्य हुआ, ये भी अजीब बात है, दोनों उंगली पे तोता और मैना आके बैठ गए, और केवल बैठे नहीं वार्तालाप भी करने लगे। तो भगवान ने कीर्तन रोका और क्या वार्तालाप हो रहा है वो सुनना आरम्भ किया। तोता कह रहा है कि हमारे कृष्ण जो है कितने महान है पता है, इतनी अच्छी मुरली बजाते हैं, सबका दिल मोह लेते हैं। तो सारी कहती है, हाँ बात तो सही है आपकी, लेकिन मुरली तब बजा सकते हैं जब हमारे राधा रानी साथ में होती है। राधा रानी साथ में है तब मुरली बजती है, जब वो साथ में नहीं होती है तो ये मुरझाए मुरझाए रहते हैं, जैसे मानो कोई शक्ति नहीं, कोई गति नहीं, कोई कला नहीं, कोई गुण नहीं। इस तरह से तो लोहड़ा ने बहुत, लेकिन शुक जो है वो जो जो भगवान के गौरव में बोलता है वो सारी मान लेती है कि सही है, लेकिन कहती है कि ये सब सही है जब राजा रानी है, ये सब गलत है जब राजा रानी नहीं है। इससे बहुत देर तक संवाद होता है दोनों का, मानो एक तरह से वाद विवाद भी है और वाद विवाद नहीं भी है, क्योंकि सब तो मान रही है वो, एवरीथिंग इज एक्सेप्टिंग, यस यस योर कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल, यस आई एक्सेप्ट इट। लेकिन जब राजा रानी होती है इनका सौंदर्य बढ़ता है, जब नहीं होते हैं तो बहुत मायूस रहते हैं। इस तरह से बहुत देर तक ये संवाद करते हैं, और सुख के और सारी के संवाद में सारी जीत जाती है, और दोनों उड़कर फिर अपने पंछी पेड़ के डाल पर जाके बैठ जाते हैं। फिर दोबारा मोर आते हैं, भगवान के सामने नाच करते हैं, मोर को देखकर उसके रंग को देखकर भगवान कृष्ण की याद आती है उनको, और चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं। फिर बलभद्र को समस्या है, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते कान में, तो ऐसे कहा गया कि बेहोश अवस्था से थोड़ी सी होश में आते हैं वो, इन बिटवीन हाफ कॉन्शियस, और उस हाफ कॉन्शियस में वो कांटों पे रोल हो जाते हैं, कांटों पे लोटपोट होते हैं भगवान, इतना दिव्य भाव है उनका। ऐसे कहा गया कि जो भाव का अनुभव कर रहे हैं भगवान, जब वो जगन्नाथपुर में थे तब वो अति प्रेम में थे भगवान के, अति प्रेम में भाव का अनुभव करते थे। जब वो ब्रज के रास्ते में थे तो वो भाव उनका 100 गुना बढ़ गया, जब ब्रज में पहुंचे तो वो 1000 गुना बढ़ गया, और जब ब्रज के अंदर विहार कर रहे थे तो वो 100,000 यानी कि 1,00,000 गुना बढ़ गया। और उसका कुछ कुछ अनुभव यहां पर हो रहा है, भगवान बेहोश होकर आधी होश में कांटों पर लोटपोट हो रहे हैं। फिर वहां से वो कीर्तन करते 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 अरिष्टग्राम आए, अरिष्टग्राम एक गोवर्धन के पास है, अरिष्टग्राम क्यों नाम दिया, क्योंकि अरिष्टासुर नाम का बैल जो है उसका वध भगवान ने अरिष्टग्राम में किया था, तो राधा कुंड का जो गांव है उसको अरिष्टग्राम कहते हैं। वहां पर जब पहुंचे तो वो बाह्य चेतना में आ गए, मतलब नॉर्मल हो गए हमारी दृष्टि से, जब अति भाव में थे तो नाचते हुए गाते हुए गिरते हुए उठते हुए रोमांच होते हुए ऐसे आ रहे थे ना वो, तो एकदम नॉर्मल आ गए, और अपनी ही लीलाओं के बारे में अरिष्टग्राम के ब्रजवासियों को इंक्वायरी करने लगे कि राधा कुंड श्याम कुंड किधर है। तो सनोडिया ब्राह्मण को भी पता नहीं चला कि राधा कुंड श्याम कुंड किधर है, बता नहीं पाया। बलभद्र और ब्राह्मण तो नहीं थे, बाहर के आए थे, सनोडिया ब्राह्मण ने भी इंक्वायरी किया तो कोई बता नहीं पाया। उन्होंने बहुत कीर्तन किया राधा कुंड श्याम कुंड के इलाके में अरिष्टग्राम में। फिर महाप्रभु चैतन्य ने एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ, एक इमली नहीं, कौन सा पेड़ था वो, तमाल, तमाल के पेड़ के नीचे, तमाल तला के नीचे बैठकर महाप्रभु जी ने ध्यान किया। और जब ध्यान किया तो उनके दर्शन में उनको ये दिखाई पड़ा कि राधा कुंड और श्याम कुंड के किनारे राधा और कृष्ण और सखियां लीला कर रही हैं। टाइम क्या है उसका? 11:48। इस समय राधा और कृष्ण अपनी सखियों को लेकर राधा कुंड श्याम कुंड किनारे में आते हैं, स्नान करते हैं और बहुत लीला करते हैं। उसके अंदर एक लीला है पाशा केला, मतलब वो ना पाशा मतलब चेस, क्या कहते हैं उसको, द्यूत, द्यूत कहते हैं उसको। हाँ, वो एक वहाँ पर एक घाट है जिसका नाम है पाशा खेला घाट, क्योंकि भगवान राधा रानी को हर एक गेम में हरा देते हैं। तो बहुत देर हारने के बाद राधा रानी कहते हैं कि हम चेस खेलेंगे, और चेस के हर गेम में वो उसको हराती तो वो घाट जो है वो श्याम कुंड के किनारे हैं, उसके सामने जो है घाट, उसका नाम भूल गया मैं, जहाँ पर वो पांडवों के पेड़ है, वहाँ पर वो 11:48 में सब लोग मिलकर स्नान करते हैं। तो ये सब दर्शन उनको हुआ महाप्रभु जी को। उन्हें आंखें खोली तो उनको आंखों के सामने दो छोटे से ऐसे कीचड़ वाले, थोड़े जल वाले ऐसे कुंड दिखाई पड़े, और सब लोग देख रहे हैं उनकी आंखों के सामने। महाप्रभु जी अपने ध्यान से बैठक से उठते हैं और भाग के जाकर उसमें कूद जाते हैं, और राधा कुंड के, राधा कुंड श्याम कुंड जो छोटे थे उसमें स्नान करते हैं, जोरदार करते हैं। सब ब्रजवासी भाग के देखते हैं कि सन्यासी को क्या हो गया, अचानक तो अभी बैठा था भजन कर रहा था, अचानक कीचड़ में कूद पड़ा। मतलब ये कीचड़ नहीं है, ये राधा कुंड और श्याम कुंड है, उसका उद्धार करो आप। और बलभद्र को बोला कि ये इसके अंदर जो कीचड़ है उसको निकालो। पहले निकाला, फिर उसने अपने तिलक लगाया पूरा, और बलभद्र को कहा कुछ साथ में ले लो, रास्ता में और यूज करेंगे उसको। और महाप्रभु जी ने इस तरह से राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया, तभी वो कंकण कुंड और श्याम कुंड के नाम से प्रसिद्ध था। तो उसका रघुनाथ गोस्वामी ने उसका पहले उद्धार किया, फिर उसके बाद में राजा ने आगे आकर दूसरी बार उसका उद्धार। आज जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो डबल दो उद्धार के बाद का दर्शन है आज का। और जब राधा कुंड का अभी साफ किया गया ना, उसको साफ सफाई की गई ना, उद्धार किया गया जीर्णोद्धार, तभी वो जो कंकण कुंड और श्याम कुंड था पहले वाला, उसकी बॉर्डर भी दिखाई पड़ी थी, क्योंकि वहीं पर वो बना था। उसके बाद में भगवान कुसुम सरोवर चले गए और वहां पर उन्होंने स्नान किया। ये कुसुम सरोवर क्या चीज है? यहाँ पर कुसुम वन था, वहां पर सब सखियां राधा रानी को लेकर अपने साथ में आकर फूल बीनते थे भगवान को श्रृंगार करने के लिए। और एक दिन राधा रानी को भगवान ने माली के रूप में आके बहुत डराया धमकाया, सब सखियां भाग गई। फिर राधा रानी जब अकेली हो गई तो अपना रूप प्रकट किया, और फिर अकेले ने उन्होंने कहा कि हम अभी इस फूलों को धोएंगे, आप कहाँ धोते हो? तो राधा रानी ने कहा कि हम लोग इसको रोज बीन कर यहाँ से जमुना जी में जाकर धोते हैं उसको। चलो जमुना जी जाएंगे। तो राधा रानी कहा नहीं, आपके साथ चलने में संकोच है हमको, लोग क्या कहेंगे। तो हमने क्या, राधा रानी ने कहा कि अभी कैसे धोएंगे इसको। भगवान ने कहा क्या बात है, हम जमुना जी को यहाँ बुला लेंगे। भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान ने पैर से गड्ढा खोदा वहां पर कुसुम वन के अंदर, और जमुना जी को आह्वान किया, और जमुना जी ने वहां पर आकर जल दे दिया अपना, और कुसुम सरोवर तैयार हो गया। फिर राधा रानी ने फूल धोकर भगवान के लिए माला बनाए बनाने के बजाय कृष्ण भगवान ने राधा रानी के बालों का श्रृंगार किया। वो स्थान है कुसुम सरोवर। तो भगवान ने वहां पर स्नान किया, और वहां से भगवान ने सबसे पहली बार गिरिराज का दर्शन किया। एक शिला उठाई, उसको गले लगाकर उन्होंने इतना जोरदार आलिंगन दिया कि वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। वो इतना गिरिराज का दर्शन करते भाव विभोर हो गए। वहां से दौड़ते हुए कीर्तन करते वो मानसी गंगा गए, तो मानसी गंगा में स्नान किया। मानसी गंगा वो जगह है जहां पर भगवान के मन से गंगा देवी प्रकट हुई थी, ब्रजवासियों के आनंद के लिए, उनको स्नान कराने के लिए। भगवान के जबान पर, भगवान के वचन पर विश्वास रखते हुए नंद बाबा वहां पर गए थे, और सब ब्रजवासियों के सामने, अपने बाबा के सामने भगवान ने मन से गंगा देवी को प्रकट किया था, और फिर ब्रजवासियों ने उसमें स्नान किया था, इसलिए कहा, नाम पड़ा मानसी गंगा। उसमें भगवान ने स्नान किया, वहां कीर्तन किया, फिर वहां से हरिदेव के मंदिर गए। हरिदेव जो है वो ब्रज के चार देवों में से प्रधान देव है। हरिदेव, गोविंद देव, केशव देव, और कौन से देव है? बलदेव। बलदेव, हरिदेव, केशव देव और गोविंद देव। बलदेव जो है दक्षिण दिशा में है, केशव देव मथुरा में है, हरिदेव गोवर्धन में है, और गोविंद देव वृंदावन में, अपने काम्यवन में। तो हरिदेव में जब उन्होंने कीर्तन किया जोरदार, तब सारे ब्रजवासी वहां इकट्ठा हुए, बोले कि कृष्ण भगवान लौट कर आए हैं, द्वापर में जो अंतर्धान हो गए थे वो दोबारा उतार लिए। तो उसके बाद में जब वो गोवर्धन की भगवान ने परिक्रमा दी, भगवान ने अपने 2 महीने के वास्तव्य में वृंदावन में कई बार गोवर्धन की प्रदक्षिणा की। तो पहली बार प्रदक्षिणा की तो उनको अन्नकूट ग्राम में जब आए तो उनको गोपाल जी की याद आई, क्योंकि सनोडिया ब्राह्मण के साथ में जब बैठकर वो चर्चा कर रहे थे और माधवेंद्रपुरी उनके गुरु जी का विषय चल रहा था, तो नेचुरली गोपाल जी का विषय तो आएगा ही ना, कैसे नहीं आएगा। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य सनोडिया ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को बताया था कि वो गोपाल जी की मूर्ति जो मेरे गुरु महाराज ने प्रकट की थी वो आज भी गोवर्धन अन्नकूट में विराजमान है। तो जैसे ही अन्नकूट ग्राम भगवान पहुंचे तो उनको गोपाल जी की याद आई, भाव विभोर हो गए वो गोपाल जी की बात सुनकर, और उनके मन में बहुत उत्कट इच्छा हुई कि गोपाल जी का दर्शन किया जाए। लेकिन गोपाल जी तो गोवर्धन के ऊपर हैं और महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे, जब कृष्ण के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आए थे तो रोज गोवर्धन के ऊपर चढ़कर लीला करते थे, गायों को लेकर ग्वाल बालों को लेकर सब लोग वहां पर लीला करते थे। लेकिन जब भक्त बनकर आए हैं तो विष्णु जी का पर्वत है वो, संक्षेप में उसकी ऐसी कथा है कि सती अनसुया के पास ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों उनकी पातिव्रत की परीक्षा करने के लिए गए थे, और उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि बनकर गए थे और कहा कि हम आपके पास माधुकरी करना चाहते हैं, आ जाओ, तो हमारी एक कंडीशन है, बोले आप नग्न अवस्था में हमको परोसोगे तो हम आपके यहाँ रोटी खा सकते हैं। तो समझ गई वो कि दाल में काला है कुछ। अंदर गई, अपने पति की सेवा कर रही थी उस समय, अंदर गई और कमंडल लेके आई पति का, उस कमंडल से जल लेकर तीनों साधुओं पर डाला उसने, तो तीनों साधु जो है ना नंगे बालक हो गए छोटे से, तो उन्होंने उनको बिठाया और भोजन कराया, अपने भी वस्त्र उतार कर, और वो बालक जो है वो इतने प्रेम में आ गए, माता के समान भावना हुई उनकी, और इनका भी दिल ऐसा हुआ कि उनको बालक को देखकर माता का प्रेम उत्पन्न हुआ। तो तीनों लोग वहीं रह गए, उनकी पत्नियों ने ये अहम किया था कि हम सबसे बड़ी पतिव्रता हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी पर एक है अनसुया, वो आपसे भी श्रेष्ठ है, तो जाओ परीक्षा करके आओ, सिद्ध करो कि वो मेरे से श्रेष्ठ है। तो ये परीक्षा करने आए थे और खुद बालक बन के वहीं रह गए वो। तो फिर कुछ देर बाद तीनों की पत्नियां जो है व्याकुल हो गई, कहाँ गए पति हमारे, टेस्ट देने गए थे फेल हो गए क्या। तो वो ढूंढते ढूंढते आ गई, इनके ही कुटी में आ गई, बोली कहाँ गए, बोले देखो खेल रहे हैं, तीन बालक नंगे खेल रहे हैं, बोले ये तुम्हारे पति है, ले जाओ उनको। तो जाने का समय आया तो तीनों को इतनी प्रेम हुआ था अपनी माता से अनसुया से, क्योंकि हम आपका बच्चा बनकर आएंगे, हम वी वॉन्ट टू बिकम योर सन। तो फिर दत्तात्रेय उनके पुत्र बने, अत्रेय मतलब कौन, दत्तात्रेय, अनसुया और अत्रि मुनि के पुत्र जो है वो भगवान ने अवतार लिया उनके पेट उनके गर्भ से। और ये तो अनसुया ने मान लिया, लेकिन चूंकि मेरी पतिव्रत की परीक्षा करने आए, ने शाप भी दिया कि तुम तीनों पत्थर बन जाओगे। तो कहाँ बने पत्थर, वो ब्रह्मा जी बने बरसाने में, शिव जी बने नंदगांव में, और विष्णु महाराज बने गोवर्धन के रूप में। तो ये विष्णु जी का पर्वत है, इसलिए भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु उस पर चढ़ने को हिचकिचा रहे थे, मन में इतनी उत्कंठा हुई उत्पन्न, गोपाल जी व्याकुल हो गए वहां पर, बोले महाप्रभु चैतन्य को दर्शन देना चाहिए। तो गोपाल जी ने बड़ा ट्रिक किया, ट्रिक उन्होंने ऐसा बवाल फैला दिया कि तुर्कस्तान के मुगल आ रहे हैं अटैक करने के लिए, मंदिर को नष्ट करने के लिए। जैसे ही ये बवाल उठा ब्रज में, तो सारे पुजारियों ने गोपाल जी को लेकर भागे, वो कहाँ भागे, गांठोली गांव में, जानते हैं कहाँ पर है गांठोली गांव, एनीबडी नोज, हरे कृष्णा। ये जो गांठोली गांव है ये गोवर्धन की परिक्रमा से जो डीग का रास्ता है ना उस तरफ ये गांव है गांठोली। हाँ क्यों नाम पड़ा गांठोली इसको, क्योंकि जब राधा और कृष्ण वहां पर एक बार बैठे थे तो ललिता देवी ने छुपके से जाकर पीछे से उनके वस्त्रों की गांठ लगा दी, गांठ, इसलिए नाम क्या पड़ा गांठोली। वो सुंदर लीला है। तो वो उस गांठोली गांव में वो पुजारी लोग गोपाल जी को लेकर भागे छुपाने के भाव से, और अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर दोबारा परिक्रमा दी, फिर अन्नकूट ग्राम आके उन्होंने याद किया तो उनको एक खबर मालूम पड़ी, नहीं नहीं उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा की और गोविंद कुंड में स्नान किया, और जब गोविंद कुंड में स्नान करके विरक्त हो गए मतलब मुक्त हो गए, परिक्रमा करके समाप्त हो गई, तो ध्रुवराष्ट्र ने उनको बताया कि कल ऐसे यहाँ पर आवाज आई है कि मुगल आ रहे हैं, तुर्कस्तान के मुगल आ रहे हैं, और वो उस दर से पुजारी लोग गोपाल को लेकर गांठोली गांव गए हैं। ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु भाग गए वहां पर एकदम हवा की गति से। हाँ, जिनको दर्शन करना था वो ऐसे मिल रहा है तो भाग गए। गांठोली गांव वहां से कम 5-6 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर भाग गए। और ऐसे कहा गया है कि 3 दिन और 3 रात गांठोली में गोपाल जी के सामने चैतन्य महाप्रभु ने दिन रात कीर्तन किया, 24 आवर्स इंटू 3। हाँ, बिना खाए पिए ओनली कीर्तन। सब ब्रजवासी लोग पागल हो गए उनके कीर्तन से। 3 दिन बाद सबको मालूम पड़ा कि ये केवल क्या था, और इस बार रूमर अफवाह थी, अफवाह। इसलिए फिर दोबारा उनको वापस ले जाने का निर्णय हुआ। तभी चैतन्य महाप्रभु ने उस क्या कहते जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस के अग्रमुख पे रहकर कीर्तन करते करते गोपाल जी को फिर पुजारियों ने ऊपर स्थापन कर दिया। ऐसी ये कथा है कि कैसे भक्त के लिए भगवान व्याकुल होते हैं। भगवान भक्तों के प्रेम के और भक्ति भाव को प्रतिसाद देते हैं हमेशा। ऐसे ही एक बार रूप गोस्वामी जी को गोपाल जी का दर्शन करने का दिल हुआ, वो थे गोवर्धन के ऊपर। तो फिर गोपाल जी ने ट्रिक किया, फिर मुसलमान आ रहे हैं सैनिक, ऐसा एक अफवाह उड़ाया। फिर पुजारी भागे उनको लेकर, इस बार भागे मथुरा, मथुरा गए और भगवान को 30 दिन रखा। तो उस समय रूप गोस्वामी सारे 6 गोस्वामियों को, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सबको लेकर वो मथुरा गए और 30 दिन तक उन्होंने गोपाल जी का सेवा किया। फिर वापस गोपाल जी गोवर्धन लौट के आए। उसके बाद में भगवान काम्यवन गए। काम्यवन जो है वो प्रति वृंदावन है। हाँ, वृंदावन जैसा ही गौरवशाली है, नंबर 2। मतलब गोवर्धन वृंदावन जो है वो अति प्रिय है सब वनों में से। उसका नेक्स्ट प्रिय वन जो है वो काम्यवन है। काम्यवन को आपको जाना होगा, क्योंकि काम्यवन की लीला यहाँ बताएंगे तो शाम तक भी खत्म नहीं होगी। काम्यवन की लीला जो है अनंत लीला है, बहुत सुंदर सुंदर। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर भगवान ने श्रीलंका को प्रकट किया है, सेतु बंध को प्रकट किया है, हाँ, रामेश्वर को प्रकट किया है। वहां पर भगवान ने दर्शन देकर कृष्ण के रूप में रावण राम बनकर उन्होंने गोपियों के आंखों के सामने रावण को मारा है, लीला करके दिखाया है गोपियों के सामने। हाँ, 1000 कुंड है वहां पर, 84 मेन कुंड है, उसमें 9 कुंड परशुराम जी ने वहां पर स्थापन किए थे। पांडवों का भी एक कुंड है जहां पर पांडवों ने वनवास में वहां पर निवास किया था। अनंत कहानियां हैं। विमल राजा का एक महान कुंड है जो सब तीर्थों का राजा है। 84 कुंड में से श्रेष्ठ कुंड वहां पर, ऐसे कहते हैं कि 68,000 तीर्थ उसके अंदर है, सब तीर्थों का राजा है वो भी काम्यवन में है। तो भगवान ने काम्यवन में जाकर इन सारे हजारों कुंडों में स्नान किया और चरण पहाड़ी पे गए जहां पर भगवान ने मुरली बजाई थी। तो शिवजी वहां पत्थर बने हुए थे उस पहाड़ के रूप में, तो भगवान के मुरली बजाने से वो पिघल गए और भगवान का चरण चिन्ह जो है उसकी चोटी पर उत्पन्न हुआ। उसका दर्शन भगवान ने किया और फिर भगवान वहां पर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के चरणों का दर्शन करके बेहोश हो गए। फिर वहां से वो आए नंदगांव। आए नंदगांव, आके उन्होंने पावन सरोवर में स्नान किया। पावन सरोवर में सभी जितने भी तीर्थ स्थान हैं, प्रयागराज और जितनी भी नदियां हैं, जितने भी संगम हैं, सब वहां पर आकर स्नान करते हैं अक्षय तृतीया के दिन। क्योंकि तो साल भर में सब जगह पर स्नान लोग करते हैं तो उसके अंदर सारे लोगों के पाप इकट्ठा होते हैं, तो वो सारे पापों का स्टॉक जो है उसको नष्ट करने के लिए स्वयं वो पाप नष्ट करने वाले स्थान जो है अपने नंदगांव में आते हैं। पावन सरोवर, जो उसका नाम नंद सरोवर था उस समय, उसमें स्नान करते हैं और अपने आप को सारे पापों से मुक्त कराकर धन्य मानते हैं और फिर अपना ड्यूटी देने के लिए चले जाते हैं। एक दिन में, एक साल में एक बार वहां पर आकर आते हैं। पापक शालन प्लांट में आते हैं वो अपना पाप नष्ट करने के लिए। तो इसके बाद में उसका नाम पावन सरोवर पड़ा। उसमें महाप्रभु चैतन्य ने स्नान किया। नंदगांव में 56 कुंड थे। हाँ, उसकी लिस्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कुंड का नाम है छाछ कुंड। पता है वो कैसे बना छाछ कुंड? एनी आइडिया, एनी गेस, वाइल्ड गेस, क्या हो सकता है बताओ? हाँ, छाछ कुंड कैसे बना होगा? अरे भगवान के होते हुए ब्रज में इतना ऐश्वर्य था, इतनी संपन्नता थी कि नंद भवन में पहाड़ के ऊपर घर था नंद बाबा का, है ना। वहां से जो छाछ गिरती थी ना, वो गिर के इकट्ठा होकर छाछ कुंड बना। समझ एक्सेस ना, समझ एक्सेस, जो वहां से बहता था वो इकट्ठा होकर कुंड बना, छाछ कुंड। तो ऐसे अनेक कुंड है वहां पर। हाँ, जैसे एक है मोती कुंड, जहाँ पर भगवान ने मोती बोए थे, मोती बोकर मोती की खेती की थी ना भगवान ने, तो मोती कुंड है। और वहाँ पर कई कुंड, कृष्ण कुंड है, यशोदा कुंड है, बहुत सारे कुंड, तो सब में भगवान ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु नंदीश्वर पहाड़ पर चढ़े और अपने ही बाल लीलाओं के बारे में ब्रजवासियों से इंक्वायरी करने लगे। बोले, तो यहाँ पर कोई नंद बाबा का मूर्ति है क्या, कोई मोटे से बाबा, कोई ब्रजवासी स्त्री पुरुष, कोई बालक की मूर्ति है, और कोई ये कुंड किधर है, वो कुंड कैसे, इंक्वायरी करने लगे। हाँ, वो जगह किधर है, ये जगह किधर है। तो ब्रजवासी ने कहा, उनको देखे, उनके भाव को देखकर, कि एक पहाड़ पर एक गुफा है और उस गुफा के अंदर तीन मूर्तियां हैं, एक माता पिता और एक बालक की मूर्ति है। भाग के महाप्रभु चैतन्य वहां पर गए, गुफा में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि ऐसे मजबूत शरीर वाले नंद बाबा की मूर्ति, उसके बाद में कोमल यशोदा मैया की मूर्ति, बीच में छोटा नन्ना सा सांवला सा बालक बैठा हुआ है, और सब इसके इनके अद्भुत भाव को देखकर ब्रजवासी भी उनके पीछे पीछे आए। और क्या देख रहे हैं वो, कि नंद बाबा को छूकर, यशोदा मैया को छूकर और कृष्ण भगवान को छूकर ये सन्यासी कुछ बात कर रहे हैं उनसे। हाँ, टॉकिंग समथिंग, और जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है, क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इससे देख के सबको यकीन हुआ कि ये कृष्ण ही हो सकते हैं। इस तरह से यशोदा मैया से, नंद बाबा से कोई बात नहीं कर सकता, इतने प्रेम से, ही हैज टू बी कृष्णा। सब लोगों ने आनंद मनाया कि कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए, तो द्वापर के अंत में दोबारा ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए वापस आ गए और उन्होंने वहां पर कीर्तन किया। फिर वो नरसिंह मंदिर गए। नरसिंह मंदिर वो मंदिर है जहां पर नंद बाबा भगवान की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान की पूजा करते थे। अभी भी है वो नरसिंह मंदिर, भगवान के संकट की रक्षा करने के लिए वहां पर भगवान की के लिए प्रार्थना करते थे। फिर यशोदा कुंड गए। यशोदा कुंड वो जगह है जहां पर यशोदा जी, जब कृष्ण भगवान छोटे से थे तो अपने ही कुंड में उनको नहलाते थे, कृष्ण बलराम को। थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें कहा, हमारे लिए अलग कुंड चाहिए, तो कृष्ण कुंड का निर्माण हुआ। फिर वो अलग से, तो कृष्ण कुंड भी है, यशोदा कुंड भी है, आज भी है। तो यशोदा कुंड का दर्शन किया और स्नान किया। फिर नंद बैठक गए भगवान चैतन्य महाप्रभु। नंद बैठक कौन सी जगह है? नंद बैठक वो जगह है जब संध्या का समय होता है और भगवान को बाल ग्वाल बालों का, भगवान का गाय लेकर लौटने का समय होता है, तो नंद बाबा यशोदा मैया व्याकुल हो जाते हैं बहुत। वो पहाड़ पर चढ़कर अंदर घर में प्रवेश करने तक उनको धीरज नहीं होता है, तो वो ऊपर से नीचे से जाते हैं पहाड़ के नीचे, और वहीं पर कृष्ण को क्या करते, स्वागत करते हैं उनका, दे रिसीव हिम देयर ओनली। और नंद बाबा में उधर एक बहुत सुंदर फोटो है जिसमें नंद बाबा बैठे हुए हैं नंद बैठक पर, और दोनों गोद में कृष्ण बलराम अपने दोनों के पाँव को मिलाकर बैठे हुए हैं और बता रहे हैं क्या क्या हुआ आज, आज के गौचारण में क्या हुआ। सुंदर फोटो है। तो ये आतुरता, नो क्या कहते हैं उसको, उत्कट आतुरता है ये, जो जो सहन नहीं कर सकते कि भी ऊपर आने तक कैसे रुकेंगे हम लोग, दिन भर तो आगे पीछे डोल रहे हैं, देख रहे हैं सूरज कितना ऊपर है, पर कितना ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है वो। जब झुकता है सूरज तो वो आगे पीछे दौड़ रहे हैं, जब झुकता है तो फिर सब कुछ छोड़ के सखियों को लेकर, आरती दीपक सब लेकर नीचे चले आते हैं नंद बैठक पर। तो वहां पर दर्शन किया। फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु खदीर वन गए। खदीर वन जो वहां से कुछ 4-5 किलोमीटर पर है, खदीर वन में भगवान ने बकासुर का वध किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने माधव सरोवर में स्नान किया जिसके किनारे में भगवान ने बकासुर का वध किया था, और वहां पर बैठकर पूरी बकासुर वध की कथा सुनी भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने। फिर चैतन्य महाप्रभु शेषशायी गए। शेषशायी वो जगह है जो कोसी के पास है, और शेषशायी में भगवान ने ग्वाल बालों के लिए विष्णु और अनंत शेष का दर्शन दिया था। बलराम जी शेष बन गए थे और कृष्ण भगवान विष्णु बन गए थे, और वो दर्शन सब ग्वाल बालों ने देखा था। उसका नाम है शेषशायी, शेषशायी। और शेषशायी इस जगह पर प्रभुपाद जी ने भक्ति सुदान जी का प्रवचन सुना था। जब भक्ति सुदान जी प्रवचन कर रहे थे तो कुछ देर लोग बैठे थे उसमें, फिर सब लोग उठकर अब दर्शन करने चले गए, सब यात्रा करने के लिए। कथा चलती रही, एक ही व्यक्ति सभागृह में था, वो थे प्रभुपाद जी, अभयचरण बैठे थे और अकेले उन्होंने पूरा प्रवचन सुना। तब भक्ति सुधा जी ने कहा कि ये सुनने में बहुत एक्सपर्ट है, श्रवण में बहुत कुशल है, आगे जाकर जो भी बोलेंगे उसको नोट करते जाओ, ऐसे अपने शिष्यों को इन्हें आदेश दिया। वॉट एवर ही विल स्पीक एंड ही विल राइट यू शुड पब्लिश। ये आदेश प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के बारे में भक्ति सुधा जी ने इस जगह पर दिया था, शेषशाही। तो वहां से कोसी गए चैतन्य महाप्रभु। कोसी ये द्वारका है, गज की द्वारका, वहां पर भगवान ने द्वारका को प्रकट किया है। वहां पर जो द्वारका में भगवान गोपियों की याद करके रोते थे, तो उनके अश्रुओं से गोमती नदी बनी हुई है और सागर भी है वहां पर द्वारका में। तो भगवान ने गोमती नदी और सागर दोनों कुंड के रूप में कोसी में प्रकट किया गोपियों के आनंद के लिए। और वहीं पर भगवान चैतन्य महाप्रभु को लक्ष्मी जी का दर्शन हुआ, शेषशाही में लक्ष्मी ने भगवान को दर्शन दिया। फिर भगवान खेलन वन गए, जहां पर कृष्ण भगवान खेलते थे बचपन में। उसके बाद में भांडेर वन गए, भांडेर वन में कई लीलाएं भगवान की। हाँ, संक्षेप में कहा जाए तो भांडेर वन में भगवान ने वत्सासुर को मारा, बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारा, भांडेर वन में भगवान ने राजा रानी के साथ विवाह किया, छोटे से रूप से मिथे बालक रूप में 16 साल के बन गए, अदृश्य हो गए, आगे जाकर 16 साल के बन गए। फिर वहां बृहस्पति सब देवता प्रकट हो गए और भांडेर वट के नीचे बृहस्पति ने भगवान राधा रानी का भगवान के साथ विवाह करा दिया, भांडेर वट। भांडेर वन में और भी लीला है कि वहां पर कृष्ण भगवान से गोपियां कुश्ती लड़ा करती थी, तो कहते हैं मल्ल लीला। हाँ, और उस लीला में सारी गोपियों ने भगवान को हराया है। सुंदर जगह है, वहां पर भगवान ने राधा रानी के मांग में सिंदूर भरा है। और वहां पर वत्सासुर को मारने के बाद जब ग्वाल वालों ने भगवान को रिजेक्ट कर दिया कि आपने गाय के बछड़े का वध किया है, तो भगवान ने अपने वेणु से वहां पर एक कुआं खोदा है और सभी नदियों को आह्वान किया कि उसके अंदर प्रवेश करो। फिर उसके अंदर भगवान ने स्नान किया है। आज ऐसी ऐसी है वहां पर कि सोमवती अमावस्या के दिन, मतलब जो अमावस्या सोमवार के दिन में आती, बहुत रेयर होती है, उस दिन इस कुएं में से दूध निकलता है और उसमें स्नान करने से ऐसे कहा गया है कि जिसको पुत्र नहीं है ऐसी स्त्री को पुत्र होता है। ओके, तो ये वहां पर लीला है। उसके बाद भगवान ने जमुना जी को क्रॉस किया। अच्छा, और एक लीला है भांडेर वन में, सुदामा जी वहां पर भगवान का इंतजार करते हुए खड़े थे। जब भगवान गए मथुरा तो सुदामा जी ने कहा कि कब आओगे, तो भगवान ने कहा 2 दिन बाद आएंगे। तो पक्का आओगे, आएंगे, जब तक तुम नहीं आओगे मैं इसी वट पे पास खड़ा रहूंगा। तो भगवान कब आए, 2 दिन के बाद आए क्या भगवान, नहीं आए, आए ही नहीं वो। तो सुदामा जी वहीं खड़े थे, जब भांडेर वट के पास पहुंचे, वो ये बंसी वट कहते हैं उसको, भांडेर वट तो वो है जहां पर शादी हुई थी, आगे जाकर एक वट है उसका नाम बंसी वट, पर भगवान ने बैठकर बंसी बजाई थी, रासलीला भी की थी, उसके नीचे ही सुदामा जी वेट कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाकर उस इंतजार करने वाले सुदामा को भगवान ने आलिंगन दिया और तब वो वहां से गोलोक धाम चले गए। तो वेट कर रहे थे कि भगवान आएंगे, मैंने वादा किया है, कब तक नहीं आएंगे, यहीं खड़े रहेंगे। उसके बाद में भगवान ने जमुना जी पार किया और भद्रवन, बेलवन, महावन, गोकुल में चले गए। वहां पर भगवान ने दर्शन किया और आगे जाकर एक अग्रवन है और रेणुका ग्राम है, जहां पर जमदग्नि की पत्नी रेणुका है, उसका जन्म हुआ है। अग्रवन क्या है, एनीबडी नोस? अग्रवन आगरा है, आज का जो आगरा है ना वो अग्रवन है, और वो भी ब्रजमंडल में आता है, आगरा इज ऑल्सो ब्रजमंडल। ओके, तो भगवान ने ये सब वनों का दर्शन किया। फिर गोकुल में उन्होंने उन दो वृक्षों के स्थली का दर्शन किया। वृक्ष वहां पर नहीं थे क्योंकि भगवान ने उखल से ओढ़कर उस वृक्ष को वहां पर गिरा दिए थे, यमुनार्जुन उस जगह पर भगवान गए जहां पर उखल से भगवान को बांध दिया गया था। वहां पर जाकर भगवान ने अति आनंद से भगवान ने जैसे उखल से दोनों पेड़ों को गिराया उस कथा को सुना पूरी तरह से। भगवान उखल से बांधा गया, भगवान आंगन के बाहर गए, उखल को खींचा, गिरा दिया पेड़ों को, देवता मुक्त हो गए, वो सब कथा जो है उन्होंने सुना। उसके बाद लौट कर भगवान गोकुल से मथुरा आए। इस समय तक भगवान के वहां पर आने की खबर पूरे ब्रज में फैल गई थी। जब मथुरा पहुंचे तो हजारों के लाखों की संख्या में ब्रजवासी लोग उनको मिलने के लिए वहां पर आतुर हो गए। हाँ, और सबसे डिफिकल्ट जो स्थिति किसकी हुई, बलभद्र भट्टाचार्य की, क्योंकि सब लोग उनका आके बोल रहे कि हमारे घर में उनको प्रसाद के लिए बुलाओ, हमारे घर में प्रसाद के लिए बुलाओ, जैसे हमारे गुरु जी आते हैं ना, तो गुरु जी को कोई बोलता नहीं हमारे घर में आओ, उनके सर्वेंट को तंग करते हैं, हमारे घर में बुकिंग करो, लंच कहाँ गए, डिनर कहाँ ले रहे, हमारे घर नाश्ते को बुलाओ, इसको बुलाओ, तो कितने लोगों को हाँ बोलेंगे, कितने लोग ना बोलेंगे। तो बलभद्र भट्टाचार्य बड़े परेशान हो गए, किसको ना कहें, लेकिन हजारों की लाखों की संख्या देखकर चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंद नहीं हुआ, क्योंकि उनका मूड जो था एकांत भजन करने का मूड वहां पर उत्पन्न हो गया, इसलिए उन्होंने वहां से निकल गए, वो मथुरा से, और मथुरा से निकलकर वो वापस वृंदावन में आए और अक्रूर घाट में अपना स्थान उन्होंने तय किया। अक्रूर घाट वो स्थान है जहां पर अक्रूर जी ने ब्रज में प्रवेश किया था, जहां जमुना जी है, और वहां पर भगवान ने उनको वैकुंठ का दर्शन कराया था जल के अंदर। हा? तो वो स्थान में उन्होंने बैठकर वहां पर वो भगवान भोजन करते थे, रोज दोपहर का भोजन अक्रूर घाट में करते थे, और वहां से चलकर वो, मैंने बताया ना आपको, जहां पर राधा रानी का अभिषेक किया गया, जहां पर कृष्ण भगवान सांवले के गोरे हो गए, वो इमली तला में वहां पर आकर चैतन्य महाप्रभु बैठकर जप किया करते थे। इमली तला जमुना किनारे पे है, हा? तो इमली तला में बैठकर चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे भगवान सांवले रंग के थे, वो सुनहरे रंग के बन गए, वैसे इमली तला में नीचे गोरे रंग के चैतन्य महाप्रभु जो बैठकर उन्होंने कीर्तन किया, जप किया, तो वो सुनहरे रंग से सांवले रंग के बन गए, श्याममय बन गए, कृष्णमय बन गए। जप करना है तो ऐसे करना चाहिए, हाँ, भगवान के नाम से एकरूप होना चाहिए, मग्न होना चाहिए, अपने आप को भगवान के नाम के लिए समर्पण करना चाहिए। तो जमुना जी को निहारते हुए बड़े भक्ति भाव से, बड़े प्रेम से वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने जप किया, उनकी भजन स्थली है वो, आज भी वो स्थली भजन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत उत्कट है, वहां पर जाके भगवान के भक्त जप करते हैं और यही कामना करते कि हम भी वैसी मग्नता प्राप्त करें। और वहां पर एक महीना महाप्रभु चैतन्य रहे, उनका यह रोज का क्रम था, अक्रूर घाट में भोजन करना और जमुना किनारे आके वहां पर जप करना, और साथ साथ में उन्होंने एक महीने तक भगवान नाम के महिमा के बारे में ब्रजवासियों को लेक्चर दिया। एवरीडे ब्रजवासियों को बैठकर वो भगवान नाम की महिमा सुनाते थे एक महीने तक। उस बीच में क्या हुआ, कुछ ब्रजवासी जो है भाग भाग के आए, बोले कि अरे कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है, और रात को जमुना जी के अंदर कालिया का दमन कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं ब्रजवासी आके, कि रात को जमुना जी में हम लाइट देखते हैं, लाइट, वो कालिया के सर के ऊपर जो रत्न है ना, उसका दर्शन होता है, और ये भी दिखाई पड़ता है कि कोई नाच रहा है। सब लोग लगा कि कृष्ण भगवान ने वापस अवतार लिया है, तो महाप्रभु चैतन्य ने उसका खंडन किया, आप सब लोग मूर्ख हो। बलभद्र ने भी ये कहा, तो बलभद्र तुम भी ऐसे निकले। हाँ, बाद में उनको पता चला कि रात के समय जमुना जी ने बोट लेकर, एक दीपक लेकर, एक दो ब्रजवासी है नाभिक, वो फिशिंग करता है, फिशिंग तो उसका दीपक जो है, उस लगता है कि वो नाग है, और जो ब्रजवासी अंधेरे में लगता है कृष्ण है, वो उस पर नाच कर रहा है, वो बोट जो है उनको लगता है कालिया है। तो भगवान ने बहुत डांटा लोगों को, कैसे जो पाखंड है उसके पीछे आप पागल मत होना, शास्त्र के अनुसार समझने का प्रयास करना, भावना के मत समझना, शास्त्र का ज्ञान होना ही चाहिए। तो उस समय एक राजपूत था, उसका नाम था कृष्णदास, वो वहां पर आया, भाग भाग के आया, तो महाप्रभु जी को उन्होंने बताया कि मुझे रात को स्वप्न आया था, अभी राजपूत राजस्थान से आया, वो उसने स्वप्न देखा कि इमली तला के नीचे स्वयं कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं। जब वहां पर वो आया और उन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया कीर्तन करते हुए, तो उनके चरणों में वो लीन हो गया, अपने स्वप्न का वर्णन उन्होंने किया, तब महाप्रभु चैतन्य ने उनको गले लगाया, और गले लगाते ही प्रेम और भाव भक्ति भाव से वो व्याकुल हो गया, और अपना राज दरबार छोड़कर वहीं पर उन्होंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया राज दरबार छोड़कर चैतन्य महाप्रभु को आज्ञा ली उन्होंने कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं आपके सेवक के रूप में, सन्यस्त हो गया, मतलब विरक्त हो गया पूरा। अभी कितने हो गए महाप्रभु के साथ में, चार, दो पहले आए थे, एक सनुड़िया ब्राह्मण और एक कृष्णदास राजपूत। तो आचार्यगण समझाते हैं कि चमत्कारिक घटनाओं के बारे में बोलने के पहले, विश्वास रखने के पहले गुरु और साधु से सलाह मशवरा करना चाहिए। उनसे सलाह मशवरा करे बिना किसी चमत्कार के चक्र में नहीं फंसना चाहिए। जैसे पिछले चमत्कार क्या हुआ था, गणेश जी दूध पी रहे हैं, हजारों लोग लाइन लगा रहे हैं, हाँ सब भक्त लोग भी गए उसके अंदर, ऐसा समझना है, अरे गणेश दूध पी रहे हैं। तो आचार्यों ने कहा बताया, अरे कोई चमत्कार क्या है इसमें, हमारे मंदिर में रोज हमारे भगवान 6 बार खाते हैं, तो चमत्कार है नहीं, तो क्या चमत्कार है, डेली रूटीन भाई, बोला लाइनिंग अप इन द क्यू। ये अश्रद्धालु लोग जो है ना वो चमत्कार के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, जो भगवान के बारे में जानते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनको पता है कि रोज का काम है ये। आप बोले भगवान ने अवतार लिया, बोले हमारे मंदिर तो रोज रहते हो, डेली इज देयर विद अस एक्सेप्टिंग अवर वर्शिप एंड अवर फ्लावर्स एंड अवर भोगा, व्हाट इज सो सरप्राइजिंग इज देयर। उसके बाद में अक्रूर घाट में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु छलांग लगाई और जल के नीचे गए और बेहोश हो गए। सब जगह ढूंढा, बलभद्र भट्टाचार्य, सनोड़िया ब्राह्मण, राजपूत, सब जगह ढूंढ रहे हैं, फिर ढूंढ के निकाला उनको जल से, बेहोश अवस्था से, फिर जगाया हरे कृष्ण जतन करते हुए। फिर दोबारा 3 बार 4 बार रोज की घटना हो गई है। तो बलभद्र परेशान हुए कि कैसे संभाले उनको, क्योंकि राधा रानी ने पहले भी कहा था जब मेरा भाव लेकर जाओगे तो पेड़ से गिरोगे, पत्थर पे गिरोगे, कंकड़ पे गिरोगे, कांटों पे गिरोगे, ये सच था। बलभद्र भट्टाचार्य कहाँ कहाँ था संभालेंगे, एक तो ये जल में गिर रहे बेहोश होकर बार बार, और दूसरा हजारों लोग आकर विनती कर रहे हैं हमारे घर में लाओ, हमारे लाओ, हमारे घर में लाओ। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया कि अभी आपको ब्रज छोड़कर जाना चाहिए, ब्रज का निवास बहुत हो गया। उन्होंने बहाना यही बताया कि ये 1000 लोगों का जो इन्विटेशन है मैं कैसे पूरा करूँ, आपके लिए मुमकिन नहीं मेरे लिए, ये बाहरी कारण था, लेकिन अंदर से उनको महाप्रभु के बार बार जमुना जी में गिरकर बेहोश होने की चिंता थी। फिर राजी हो गए भगवान और निकल पड़े। बलभद्र भट्टाचार्य की आज्ञा सुनकर, मतलब इच्छा सुनकर वो बाहर जाने का तैयार हो गए, तो गोकुल के रास्ते से वो ब्रज के बाहर गए। जब वहां से आए, आगे जा रहे थे, वहां पर वापस गाय का झुंड आया, और गाय का झुंड आया तो जो ग्वाला था वो बंसुरी बजा रहा था, बंसुरी की आवाज सुन के वहां पर वो वापस बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिर गए वहां पर। तो ये जो बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण, सनोड़िया ब्राह्मण, कृष्ण राजपूत, सब लोग कोशिश कर रहे हैं उनको हवा देने की, और महाप्रभु जी कोई जीवन का चिन्ह नहीं उनके ऊपर, नाक से भी हवा नहीं हिल रही है, बड़े चिंतित हो गए। तो उसमें से 50 पठान सोल्जर वहां से भाग के आए घोड़े में बैठकर, इन पर आरोप लगाया उन्होंने कि आप 4 लोग इस सन्यासी को लूटने के लिए यहां पर धतूरा खिलाकर उसको बेहोश करके रखा है। तो वो बता रहे हैं उनको कि इनको ना मिर्गी की बीमारी है, बार बार फिट आती है उनको, जगह जगह गिर जाते हैं। हम लोग वहां पर कोशिश कर रहे हैं इनको जगाने की, नहीं नहीं आपको हम 4 को अरेस्ट कर देंगे। तो कृष्णदास राजपूत था, तो वीर था ना, वो क्षत्रिय था, वो खड़ा हो गया, बोलते मैं अभी आपको आवाज दूंगा तो 1000 सैनिक यहां पर आ जाएंगे, आप सबको रौंद डालेंगे। वो भी डर गए। तो ये सब वार्तालाप चल रहा था, तो वो जो 50 पठान सैनिक थे उनका मुखिया वहां पर आया, दाढ़ी वाला, बड़ा बूढ़ा, बड़ा पंडित सा था, वो बहुत ज्ञानी था, तो वहाँ पर आ गया और देखने लगा। तो ये बहस चल रही थी कि ये इन्होंने धतूरा खिलाकर इस सन्यासी को बेहोश कर दिया है, इसको लूटने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनको अरेस्ट करेंगे, ये बता रहे हैं कि नहीं इनको बीमारी है, बार बार गिर जाते हैं। तो अचानक महाप्रभु जी जग गए और जग के उठे, बोले कि मुझे ना बार बार फिट आती है, ये लोग मेरे मित्र हैं और मैं हमेशा गिर जाता हूँ, तो इनको आप माफ़ करना। फिर उस पठानों के जो गुरु थे, जो मुखिया थे, उनका और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप हुआ और कुरान के ऊपर उन्होंने चर्चा किया, और सुंदर ऐसी घटना हुई। उसके बाद में उस पठानों के मुखिया ने चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ले ली, शिष्य बन गया उनका, और बाद में सारे 50 पठान जो थे उन्होंने भी दीक्षा लिया, तो महाप्रभु के शिष्य बने। इस तरह से महाप्रभु जी ब्रज छोड़कर फिर बाहर चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु की मिठाई गौर प्रेमानंदे। तो महाप्रभु जी का जो ये वृंदावन यात्रा है, इसका हमको समझना यही है कि ब्रज भूमि कोई तीर्थ नहीं है, ब्रज भूमि परमोच्च धाम है भगवान का। हाँ, पृथ्वी पर, पृथ्वी के लिए ये सबसे बड़ा वरदान है कि पृथ्वी पर भगवान ने इस भूमि को प्रकट कर रहे हैं। जब पृथ्वी को उठाकर वराह भगवान ले जा रहे थे ना अपनी कक्षा में रखने के लिए, तब दर्शन हुआ पृथ्वी को ब्रज भूमि का, जहाँ पर अनंत फूल खिले, पेड़ हुए थे, वन थे, सरोवर थे, नदी थी, पर्वत थे, इतना समृद्ध प्रदेश था ये। तो पृथ्वी को फिर भगवान ने समझाया कि ये कौन सी भूमि है, इसकी महात्मा, इसके महिमा क्या है। तो हम सबके लिए वृंदावन जो है अंतिम गंतव्य स्थान, फाइनल डेस्टिनेशन, वहीं पर हम सबको पहुंचना है। सब धामों का धाम है वो, और उसके अंदर ऐसा लीला है, ऐसा महात्म्य है कि केवल ब्रज में एक बार जाने से आपका गौलोक धाम का एंट्री निश्चित हो जाता है। ओनली वंस वन हु गोज इन ब्रज भूमि ही गेट्स फ्री फ्रॉम ऑल द सिंपल रिएक्शंस एंड ही इज एलिजिबल टू एंटर गोलोक वृंदावन। ऐसे ब्रज के हर एक क्षेत्र का महात्म्य है। ब्रज ब्रज का स्पर्श होते ही हृदय में प्रेम जागृत होता है। काम में वन में एक जगह है गया कुंड, ऐसे कहते हैं कि वहां पर केवल जाने से, केवल वहां पहुंचने से आपके सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। खाली आपको वहां जाना है, कोई पिंडदान करने की जरूरत नहीं है, खाली गया कुंड जाना है काम्य वन में, खाली वहां खड़े रहना है बस। और खड़े रहकर आपने जितने गुजरे हुए वंश पूर्वज हैं अपने, इस साइड के भी उस साइड के जितने भी है, सबको खाली आपको याद करना है बस। केवल उतना करने से सारे पूर्वजों का गौलोक धाम में उद्धार हो जाता है। एक है गया उत्तर प्रदेश में, कहीं है उत्तर बिहार में, हाँ पटना में, वो गया में जाने के बाद में जब पिंडदान तर्पण करते हैं तो केवल पितरों का पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं होती उनकी, केवल पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो गया कुंड जब ब्रज में आश्रय ग्रहण करता है, वही गया वही व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, कुंड के रूप में जब ब्रज में आकर आश्रय ग्रहण करता है तो ब्रज के सान्निध्य से गया कुंड में ऐसी शक्ति आती है कि वहां पहुंचने पर न केवल पाप नष्ट हो जाते हैं लेकिन गौलोक धाम में आपके साथ आपके पूर्वज भी पहुंच जाते हैं। ऐसा जगह जगह की वहां पर महात्म्य है। निमल कुंड कैसा है, भगवान ने केवल 16,108 स्त्रियों से विवाह नहीं किया है, तो द्वारका की जिला है वो, तो बहुत बाद की जिला है। जब ब्रज में थे तब विमल कुंड विमल एक राजा था, उसका नाम विमल था, वो सिंधु देश में था, उसको 3 करोड़ कन्या हो गई, 3 करोड़ गर्ल्स डॉटर्स। हाँ, थोड़ा मुश्किल समझने के लिए मुश्किल है, कैसे बर्थ दिया होगा उनको उन्होंने उनको बहुत देर तक पुत्र ही प्राप्त नहीं हुआ, कोई संतान ही नहीं हुई। उसके बाद जब हुई तो 3 करोड़ कन्या हुई उनको। तो नारद मुनि आए तो बड़े चिंतित थे विमल राजा, अरे हमको एक कन्या विवाह के होगी, हमको कितनी चिंता लगी रहती, कभी विवाह होगा उसका, इनको 3 करोड़ है। हाँ, राजा हुआ तो क्या हुआ, कैसे होगा इनका उद्धार। तो नारद मुनि को उन्होंने बताया अपनी शंका को और चिंता को। नारद मुनि ने कहा कि परम भगवान कृष्ण भगवान जो है ये सबके साथ विवाह करेंगे। तो विमल राजा बहुत आनंद हो गए। तो विमल राजा को फिर नारद मुनि ने बताया कि कैसे होंगे वो, सांवले रंग के हैं, 2 भुजा वाले हैं और उनके सिर पे मोर पंख हैं, सॉरी उनके 4 भुजा हैं और सांवले रंग के हैं और मोर पंख धारण करते हैं और मुरली बजाते हैं। तो उन्हें दूत को भेजा ब्रज में ढूंढने के लिए। तो एक जगह भगवान अपने सभी मित्रों के साथ में खेल रहे थे, तो सब वर्णन अच्छी तरह से मिल गया उधर, लेकिन 4 भुजा के बाद 2 भुजा थी। तो दूत लौट के आया नाराज होकर, सब कुछ मिल गया लेकिन 4 भुजा के बदले में 2 भुजा वाला लड़का मिला। तो वापस विमल नाराज हो गया, अभी क्या करें। तो नारद मुनि ने कहा कि नहीं वही है वो, तो 4 भुजा वाले थे गोकुल में मथुरा में, वहां से वो 2 भुजा वाले बनकर ब्रज में आनंद देने के लिए आ गए। तो फिर दूत दोबारा लौट के आया और फिर उसने कृष्ण से प्रपोजल दिया कि हमारे राजा विमल राजा तो है, आपको याद कर रहे हैं। तो भगवान ने एक अलग रूप धारण किया, एक रूप छोड़ दिया नहीं, अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते, और दूसरे रूप से दूत के साथ में हवाई मार्ग से वो उड़कर सिंधु देश गए। और वहां पर सिंधु देश में विमल राजा यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ से उठकर उन्हें स्वागत किया, हवाई मार्ग से भगवान जमीन पर उतरे सिंधु देश पर, और वहां पर उन्होंने उसी यज्ञ में 3 करोड़ कन्याओं से विवाह किया विमल राजा की, और सारी कन्याओं को पत्नी बनाकर वो काम्यवन लेकर आए, और काम्यवन में उन्होंने अपने 3 करोड़ पत्नियों के साथ में बाल्य अवस्था में रासलीला किया, और उस रासलीला में भगवान के और उन 3 करोड़ कन्याओं के पत्नियों के शरीर से जो स्वेद निकला उससे बना विमल कुंड, और विमल कुंड के अंदर 84 लाख जितने सॉरी 68,000 तीर्थों ने प्रवेश किया इस दिव्य अवस्था को देखकर, और विमल कुंड निर्माण हुआ। इसे विमल कुंड में स्नान करने के बाद में साक्षात गलों की प्राप्ति होती है। ऐसे अद्भुत धाम है ब्रजभूमि, उस ब्रजभूमि के प्रति कैसे लगाव और आकर्षण होना चाहिए ये प्रतीत करने के लिए भगवान ने ब्रज को भेंट किया। लेकिन 48 साल के समय में केवल 2 महीना ब्रज में निवास किया। तो कारण यह है कि उनको ब्रज भूमि का जो सार है वो विश्व को बांटना था, इसलिए कम समय उन्होंने ब्रज में निवास किया और अधिक समय बाहर रहकर सबको हरिनाम संकीर्तन का आनंद दिया। यहां तक कि उनको जो निकट के पार्षद थे जैसे कि गदाधर पंडित, जैसे कि और कौन अद्वैत आचार्य और बाकी स्वरूप दामोदर रामानंद राय, ये सब लोग वृंदावन में नहीं आए, जगन्नाथपुरी में रहे। उसका उत्तर ये है क्योंकि वो सब लोग ब्रज उनके हृदय में प्रकट था, और हृदय में प्रकट हुए ब्रज का जो आनंद था वो बांटने के लिए हमेशा ब्रज के बाहर ही रहे। वो महाप्रभु केवल 2 महीने के लिए आए और सबसे अधिक समय उन्होंने ब्रज के बाहर बिताया, लोगों को हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ब्रज का दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए वो बाहर ही रहे। लेकिन 2 महीना आकर उन्होंने वहां का आनंद लिया, ताकि हमारे लिए क्या करना चाहिए, हमको उसी ब्रज से प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के घर से प्रेम उत्पन्न करेंगे तो अपने घर की माया जो है वो नष्ट हो जाएगी, और अपने घर की माया अगर बनी रहेगी तो बार बार यहां आप जन्म लेते रहेंगे। इसलिए इस गृहस्थी आश्रम के ग्रह से जो हमारा लगाव बना हुआ है उससे मुक्त होने के लिए भगवान के घर से प्रेम करना सीखना चाहिए। इसलिए बार बार जाकर हम यात्रा करते हैं, जब उससे प्रेम होगा तो जीवन के अंतिम समय पर उसी घर में हमारा जन्म होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। क्या करना है प्रश्न होगा तो उत्तर देंगे। एक मिनट थोड़ा रुको। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, क्या प्रश्न है आपका? ऐसा था उनका कहने का मतलब ये था कि नेतृत्व में चैतन्य महाप्रभु और पार्षद लोग सेवक के रूप में इतने, ऐसा उनका भाव था कि ऐसा नहीं जाना चाहिए। हम लोग ऐसे जाते हैं, हम लोग गुरु महाराज के संग जाते हैं और भक्तों के संग में जाते हैं, उस सभा में हम लोग नेता नहीं होते हैं, लोग हमको फॉलो नहीं करते हैं। इज दैट राइट? वो मना किया उन्होंने, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो उनके सेवक के रूप में, उनके अनुयायी के रूप में सब लोग उनके पीछे भाग रहे थे। मतलब आगे जाके सेवा करेंगे, उनके पीछे भी दौड़ेंगे, उनको भजन नहीं करने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। तो वो रूप में जाने के लिए उन्होंने मना किया उनको, डोंट गो एज अ लीडर विथ सो मेनी एसोसिएट्स टू सर्व यू, गो एज अ इनसिग्निफिकेंट पर्सन। इस बात से उन्होंने बताया।
और कोई प्रश्न है?
हाँ बोलिए। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये भाव में रहेंगे तो वो लाभ होगा, अलग भाव में जाएंगे लाभ जरूर होगा, पाप मुक्ति होगी लेकिन प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जब ये भाव में जाएंगे निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, सेवक भाव से जाएंगे, उसको ब्रज में कहते हैं सखी भाव। मतलब क्या सखी? मतलब कोई गोपी बनने का भाव नहीं, वो सखी भाव मतलब सेवक भाव, सर्वंट जो है ना, दास दास अनुदास। इस भाव से जब ब्रज में जाएंगे अपने भोग के लिए नहीं, केवल भगवान के आनंद के लिए जाएंगे, अपने अस्तित्व को भूलकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए वहां पहुंचेंगे, अहंकार को छोड़कर, सबको सम्मान देते हुए, तृण से पत्ते हुए भी, पत्ते से भी नम्र बनकर, सहनशील होकर वहां पर जाएंगे, तब जाकर ये अनुभूतियां होंगी। और वहां पर जाकर बिजनेस करेंगे, कोई धंधा करेंगे, कोई लाभ ऐश आराम करने का प्रयास करेंगे तो सब नहीं होगा। एक ब्रज जो है ना, ब्रज ये एक चेतना की स्थिति है, इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। भौतिक जगह भी है वो, मतलब एक भौगोलिक जगह भी है, इट्स अ ज्योग्राफिकल प्लेस ऑल्सो। लेकिन ब्रज ये एक उच्च स्तर पर एक चेतना की स्थिति है, उस चेतना की दिव्य स्थिति से हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मैच विद दैट कॉन्शियसनेस, तब जाकर उसका जो सार है वो आपके हृदय में प्रवेश करेगा। तो हमारा वेवलेंथ अलग रहेगा और ब्रज किसी और वेवलेंथ पे है, तो ब्रज के वेवलेंथ का लाभ आपको नहीं मिलेगा, वो प्रेम और समर्पण का वेवलेंथ है। इसलिए गोपियों को भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया, उन्होंने पहले अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उसको देखकर भगवान ने अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दिया। ये समर्पण की कॉम्पिटिशन है, वो ब्रज का भाव है। भगवान का आनंद पहले और हमें आनंद मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी भावना होगी ना। ऐसे नहीं कि भगवान को आनंद तो मिल गया ना, दे दिया हमने, हमको थोड़ा तो मिलना चाहिए, ऐसे भी नहीं। केवल भगवान के आनंद के लिए वहां पर मन बुद्धि शक्ति समय जीवन आत्मा सब समर्पित कर देते हैं। वो भावना से जब वहां जाएंगे तो ये सब लाभ होगा। हमने खाली आपको एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन उसके लिए पीछे जो है ना फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट होना न हो हमको जरूर उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ये नामुमकिन नहीं है। डिफिकल्ट जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मनुष्य जीवन में ये मुमकिन है, इसलिए हमको जाना चाहिए। और अगर जा नहीं सकते तो जहां पर भी बैठे हो ब्रज की याद करते रहने चाहिए, जहां पर भी बैठे हो ब्रज की दिशा में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो ब्रज में ही रहने का भाग्य प्राप्त होता है, लाभ होता है। अगर आप देश विदेश में कहीं पर भी हो, आप हृदय से ब्रज की याद करते हो तो आप ब्रज में ही हो, और आप ब्रज में रहते हो और दिल्ली की याद करते हो तो आप दिल्ली में हो। अल्टीमेटली ये मैटर फिजिकल मैटर नहीं है, ये स्पिरिचुअल मैटर है। जहां पर आपका स्पिरिट है तो वहां पर आप हो, अगर आपका स्पिरिट ब्रज में है तो आप ब्रज में हो, और आप शरीर ब्रज में है और स्पिरिट दिल्ली में है या अमेरिका में है तो आप वहां पर हो। तो इस भावना से ब्रज को हमको स्वीकार करना चाहिए। ऐसी भावना से हम लोग रहेंगे तो हम लोग जहां पर भी रहेंगे ब्रज में रहेंगे। फिर दिल्ली में रह रहे हो, बंबई रह रहे हो, और अमेरिका जा रहे हो, इधर आ रहे हो, कभी ब्रज में भी जा रहे हो, सब जगह ब्रज में ही रहेंगे, क्योंकि ब्रज आपके संग चलाता है हृदय से माध्यम से। मन मोर वृंदावन, जब मन अपना वृंदावन में लीन होता है तो आप जहां भी जाएंगे आपके संग में ब्रज आएगा और ब्रजवास का आनंद आपको मिलेगा। और कोई प्रश्न है किसी का? थोड़ी देर बाद पूछो, बाकी लोगों को मौका दो। ये गलत फहमी आपके बोल, नहीं नहीं उस समय जब ब्रह्मा जी ने नवद्वीप में तपस्या की तो उस समय गौरांग महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया और ये वादा किया कि जब मैं अगले युग में चैतन्य महाप्रभु बनकर आऊंगा, इस रूप में आऊंगा प्रसाद लीला करने के लिए, तब आप हरिदास ठाकुर बनकर आओगे। तो ये अनाउंसमेंट किया आगे के लिए, अभी काम पे जाओ। तो आप उस समय से लेकर द्वापर के अंत से लेकर, द्वापर के समय लीला हुई ना ये, द्वापर के बाद में जब 5000 साल बीते तो महाप्रभु चैतन्य का अवतार होने का समय आया, तभी ब्रह्मा जी फिर ठाकुर हरिदास बनकर जन्म लिया उन्होंने। और ठाकुर हरिदास के जन्म के बाद में वो गौलोक धाम चले गए, इसलिए हमारे ब्रह्मा जी अभी वहाँ पर नहीं हैं, हम दूसरे ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मा जी जो थे इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, वो ठाकुर हरिदास बनकर चैतन्य महाप्रभु लीला की कृपा से गौलोक धाम चले गए। उनको पानी पिला दिया, समझ में आपको आया प्रभु जी? Have you understood? At that time he went back to his Brahma Loka to continue his duties. तो वहीं से आए थे ना वो परीक्षा करने के लिए, वहीं वापस गए और वेट करते रहे जब तक महाप्रभु जी का अवतार होने का समय है। महाप्रभु जी का अवतार होने के पहले ही उन्होंने फुलिया ग्राम में जन्म लिया, यवन कुल में, और नामाचार्य बने। और जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो अद्वैत आचार्य और ठाकुर हरिदास दोनों मिलकर आए नवद्वीप में स्वागत करने के लिए भगवान का। ठीक है, यस प्रभु जी। कैसा मुलायम बताएं कि कठोर बताएं, कैसे बताएं, क्या इच्छा है आपकी? हाँ मुलायम शुरू करें। मतलब पत्थर फेंके कि मस्का लगाएं, ऐसे ऐसा है कि हमारा मनुष्य जीवन अगर हम भगवान के नाम के लिए नहीं दे सकते तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ है। जीवत शव समान, अगर इस मनुष्य को प्राप्त, जीवन को प्राप्त करने के बाद भी आपको भगवान के नाम के प्रति प्रेम नहीं है, कृष्ण से प्रेम नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ है पूरा। हाँ शव समान, मुर्दे के समान है, चलते फिरते मुर्दा है हम अगर हमारे अंदर कृष्ण के लिए आकर्षण प्रेम नहीं है। इतना आपको समझ में आया तो काफी है कि हाँ और ये उसकी बात है कि जो समय हमको मिला है इस जीवन में, वो समय केवल भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए मिला है। इसको कहते हैं ह्यूमन टाइम। हाँ एक होता है डॉग टाइम, एक होता है देवता टाइम, एक होता है कैट टाइम, एक होता है पंछी टाइम। मतलब उस जीवन में वो समय है, वो कुछ लिमिटेड कार्य कर सकता है। पंछी के जीवन में उड़ सकता है, जानवर के जीवन में और कुछ कर सकता है, मनुष्य जीवन में मनुष्य बुद्धि प्राप्त है उसको। इसलिए मनुष्य का जीवन का जो समय है, मनुष्य का समय जो है वो बहुत कीमती है, क्योंकि उस एक एक क्षण के प्रभाव से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये ह्यूमन टाइम अगर हम इंद्रिय भोग के लिए व्यर्थ करेंगे और नाम के लिए रुचि पैदा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। इस जीवन में जिस समय, जिस काम के लिए आपने अपना एनर्जी खर्च किया है, समय खर्च किया है, उसी अवस्था को आप अगले जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर इस जीवन में अपने भगवान के नाम के प्रति आपने आकर्षण नहीं उत्पन्न किया तो इस जीवन में जहां पर दिल लगाया उस स्थिति को आप प्राप्त हो जाएंगे इस जीवन के अंत में। मतलब क्या हो जाएंगे? सर्वश्रेष्ठ जीवन जो है मनुष्य का है, देवता से भी श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का माना गया है। तो आप सबसे श्रेष्ठ जगह पर आए और श्रेष्ठ प्राप्ति आपको हो सकती है, फिर भी आपने कार्य किया कोई और जो इसके लायक नहीं है, तो आपको अगले, आप जिस चेतना में रहे, मनुष्य के शरीर में रहते हुए जिस चेतना से आपने मैच किया उस चेतना को आप प्राप्त हो जाएंगे, और वो होगा जानवर का या पंछी का या पेड़ का या मछली का या ऐसा और कोई प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस जीवन में आपको भगवान के नाम के लिए प्रेम उत्पन्न करना है। आपको प्रेम प्राप्त भी नहीं हुआ तो भी प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास आपको करते रहना चाहिए। फल आपके हाथ में नहीं है लेकिन कृति आपके हाथ में है, और वो अगर आप नहीं करेंगे तो मनुष्य बन के फायदा क्या है? द्विपद पशु है हम, भागवत में कहते हैं कि हम दो पैर वाले पशु हैं। हल दो पैर के, हल है पशु ही, हल उन्हीं, वी आर इन द मेन ह्यूमन बींग। जैसे बंदर है ना, शेर का चमड़ी पहनता है तो शेर नहीं बनता है, वो बंदर ही रहता है वो। वैसे हम लोग है वैसे गिने हुए, लेकिन मनुष्य का कोट पहन के घूम रहे हैं और इंद्रिय भोग ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेगा। तो वैसे जीवन जी का फायदा क्या है? इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है हमको। डोंट थिंक ऑफ नेक्स्ट लाइफ कि एक पंचवार्षिक योजना होती है ना, पंचवार्षिक योजना तो पंच जीवन की योजना बना देंगे, ऐसे दस जीवन की योजना बना देंगे, ऐसा नहीं होता है इसमें। डोंट थिंक ऑफ नेक्स्ट लाइफ टाइम, यही लाइफ टाइम में फिनिश करना है आपको। और भागवतम में लिखा है 11वें स्कंद में 12वें स्कंद में इतना भयंकर समय आने वाला है, आपको जल नहीं मिलेगा, हाँ एक बोतल पानी में दिन निकालना पड़ेगा, आपको स्नान करने का मौका नहीं मिलेगा, सब लोगों की किडनियां जो है पतरे से भरी रहेंगी क्योंकि जल नहीं होगा उसके अंदर। एवरीबॉडी बाय डिफॉल्ट, जैसे आपको हृदय है, लिवर है, किडनी है, वैसे सबके किडनी में पतरियां भरी होंगी, ऐसा समय आने वाला है। आप सोएंगे तो आपको मारकर खाया जाएगा, कोई सो सकता नहीं है, ऐसी अवस्था आएगी, सब खाना समाप्त हो जाएगा दुनिया में। उसके बाद में सब प्राणियों को, जीवों को आदमी मारकर खाएगा भोजन करने के लिए, फिर केवल मनुष्य बचेंगे, फिर उसमें जो शक्तिमान होगा वो दुर्बल को मार के खाएगा, जो सोया होगा वो उसको जगा हुआ खाएगा। इस तरह से सब लोग इस स्तर पे आएंगे। क्या आप में से किसी को इच्छा है तब तक जीने की? यू वॉन्ट टू गो एंड सी हाउ इट इज लाइक दिस? हाँ, कभी कभी सुनना ही अच्छा रहता है ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपको लगता होगा ये आज भी सच है, प्लीज अंडरस्टैंड, आज भी जो बच्चे गर्भपात से गिराए जाते हैं उसका मांस होटलों में बिकता है गुप्त रूप में, मांस में मिलाकर उसको डालते हैं, और सबसे टेस्टी और सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे कॉस्टली वो गर्भ का मांस है जो लोग खाते हैं। ये आज भी हो रहा है, ये मत समझना कि आगे होगा, आज भी हो रहा है। 11वें स्कंद में लिखा है कि 11वें 12वें स्कंद में लिखा है कि कलयुग में आगे जाकर माताएं अपने ही बालक का वध करेंगे। कर रहे कि नहीं कर रहे? व्हाट इज अबॉर्शन? माता बोल रही है मेरे को पढ़ाई करना है, आई एम करियर माइंडेड, मेरे को एमबीए करना है, नौकरी करनी है, मैनेजर बनना है, बच्चा नहीं, ये अपने ही बालक को जो पेट में आया हुआ है उसका माता वध कर रही है। किसी को करियर करना है, किसी को फिल्म में एक्टिंग करना है, किसी को गरीबी है, किस पर बोलते हैं और कुछ कारण है, धन नहीं है, तो स्वार्थ के लिए और खुद के इंद्रिय भोग के लिए, खुद के कन्वीनियंस के लिए माता आज भी अपने बच्चों को मार रही है। भारत में 35,000 बालक गर्भ में ही मर जाते हैं हर दिन, एवरी सिंगल डे 35,000 फीटस इज अबॉर्टेड। तो डोंट वेट, हाँ, और समय का इंतजार मत करना। जब दिमाग जगह पर है, शरीर थोड़ा स्वस्थ है, थोड़ा बहुत धन जेब में है, आपका खाने पीने को मिल रहा है, तब तक इस नाम से लगाव कर लो। आगे जाकर कैंसर होगा, बीमार हो गई, बुढ़ापा आएगा, जोड़ों में दर्द होगा, हार्ट अटैक आएगा, हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये बीमारी वो बीमारी, कुछ कर नहीं सकते, दिन भर उसकी बात करते बैठेंगे आप। हाँ, जरा सा जाइए आप मॉर्निंग में, थोड़ा सा हमारे पास मुंबई में एक पार्क है, नाना नानी पार्क, गवर्नमेंट ने बनाया, खाली बुढ़े लोग वहां पर जाकर घूमते हैं, चलते हैं, थोड़ा सा बैठ के बातें करते हैं, जब थोड़ा चलते हैं बीच में आके बैठ जाते हैं, उनको फ्री में चाय भी देते हैं, बैठ के चाय पीते रहते हैं। जब वो चाय पीते रहते हैं तो क्या बात करते हैं, जरा सुनो आप कान से। ओनली वन टॉपिक, मेरे पैरों में दर्द है, आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, कल एक्सरे किया था, आज रिपोर्ट लेके जाने जाना है, कल और डॉक्टर को मिलने जाना है, कल भर्ती हुआ था, अभी और आगे जाने को बोला है, फिर लड़के ने आज पैसा नहीं दिया है, परेशान करते हैं, यही बोलते रहते हैं। ओनली वन टॉपिक ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। तो आपके जीवन में भी वो समय दूर नहीं है, अभी तक आपको अर्निंग कर रहे हो, थोड़ा बहुत जवान हो, थोड़ा बहुत आपका चल रहा है ठीक से, तो आपको लग रहा है जीवन में कितना काम करना है, बहुत सारा अचीवमेंट करना बाकी है, ऐसा लगेगा आपको। एक दिन आएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब केवल बीमार रहेंगे और केवल अपने कष्ट के बारे में ही चर्चा करते रहेंगे, वही लीला श्रवण करते रहेंगे आप लोग, और कुछ नहीं करेंगे। सो डोंट वेट टिल दैट टाइम, हाँ अब सब कुछ सही है, तब तक भगवान से प्रेम कर लो। प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त, हाँ कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, उस समय क्या स्मरण करेंगे आप भगवान का, जब प्राण के आपके कफ वित्त वात से आपका प्राण अट जाएंगे, अटक जाएंगे यहां पर, तो क्या करेंगे आप, भगवान का नाम जप करेंगे क्या करेंगे?
अभी करो, अभी करेंगे तो तब याद आएगा। और अभी भी ऐसे करो कि आपके प्रधान कार्य वो है। अभी आपको पूछेंगे 10 साल की उम्र में क्या क्या हुआ था आपका लाइफ में बताओ, तो अगर आपको गिरकर फैक्चर तो आपको याद आएगा कि 10 साल की उम्र में ना मैं गिर गया था, मेरा हाथ टूट गया था। लेकिन 10 साल की उम्र में 12 जनवरी को आपने क्या खाया था आपको याद आएगा क्या? बोलो ना। 10th year 5th standard 12 जनवरी को क्या खाया था ब्रेकफास्ट में आपने, याद आएगा आपको? नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रधान कार्य नहीं था आपके जीवन में। आपको अपने जीवन में याद वही आता है जो इंपॉर्टेंट था और मेन था, मेन एकदम प्रधान था। तो अगर आपने आप ही के लाइफ में भगवान के नाम के जप को प्रधान कार्य बना लिया, एक्चुअली ऐसे बोल बचन की बात नहीं, एक्चुअल प्रधान बना लिया, तो प्रधान कार्य ही आपको अंत में याद आएगा। जैसे आप बोलेंगे आपका शादी कब हुआ, तुरंत आपको बताएंगे, डेट बता देंगे, जगह बता, सब बता देंगे, क्योंकि आपके जीवन में इंपॉर्टेंट इवेंट था वो। फर्स्ट नौकरी कभी थी आपकी, तुरंत आपको याद आएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट मौके जो आपके जीवन के आपको तुरंत याद आएंगे, वैसे इंपॉर्टेंट अगर आपने भगवान के नाम को बना लिया तो ही आपको वो याद आएगा। नहीं तो अगर आपके लाइफ में वो नंबर 10 प्रायोरिटी का काम होगा तो आपको वो याद नहीं आएगा। और मौत के समय केवल एक क्षण होता है, इट्स ओनली वन मोमेंट। उस एक मोमेंट में आप कितना याद करोगे? हाथ टूटा उसको याद करोगे, शादी कब उसकी याद करोगे, फर्स्ट नौकरी को याद करोगे, पहला बच्चा कब उसको याद करोगे, पहली गाड़ी कभी उसको याद करोगे कि भगवान को याद करोगे? ये आपके ऊपर है। हम सबकी तैयारी करते हैं जीवन में, हर एक कार्य की तैयारी करते हैं, लेकिन मौत की तैयारी कभी नहीं करते। हो सकता है सभी घटनाएं सभी को जीवन में नहीं होती है, लेकिन एक घटना सबके जीवन में होती है, वो है मृत्यु। बाय डिफॉल्ट, आप चाहो या ना चाहो, अच्छा लगे ना अच्छा लगे, हु केयर्स, वो घटना आपके जीवन में होने वाली है। और उस घटना के लिए अगर आप ही नहीं कोशिश करेंगे, आपके लिए नहीं प्रयास करेंगे, तो और कौन करेगा? आपका एग्जाम मैं नहीं दे सकता, मेरी एग्जाम आप नहीं दे सकते, मेरे एग्जाम मुझे और आपके एग्जाम आपको देना है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, और अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, समझ लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका प्रश्न क्या था? डोंट इंस्ट्रक्ट गुरु। वो ऐसा ना, चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का रोल कर रहे हैं। जैसे रामानंद राय का संवाद हुआ, अभी रामानंद राय ने भगवान को इतना ज्ञान दिया है ना, राधा रानी के प्रेम तक लगे गए उनको, लेकिन एंड में क्या बोलते हैं, भगवान मैं जानता हूं, भगवान आप ही बुलवाने वाले हो, आप ही बोलने वाले हो, मैं तो कठपुतली हूं। सेवा कर रहे हैं भगवान की, भगवान की उस लीला में एक सेवक की सहायता कर रहे हो। दे आर नॉट ट्राइंग टू इंस्ट्रक्ट द लॉर्ड, उनका मूड नहीं है, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो रामानंद राय को पता था कि मुझे ये बहाने से प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझसे ये ज्ञान बुलवा रहे हैं, कि जो प्रयोजन ज्ञान है, प्रयोजन ज्ञान तो रामानंद राय से बुलवाया ना उन्होंने, सनातन जी संबंध ज्ञान बुलवाया, रूप गोस्वामी को अभिधेय ज्ञान दिया, हाँ 2 महीना उधर वाराणसी में सनातन गोस्वामी को क्या ज्ञान दिया, संबंध ज्ञान दिया, 9 दिन दशाश्वमेध घाट इलाहाबाद को त्रिवेणी में क्या ज्ञान दिया रूप गोस्वामी को, अभिधेय ज्ञान दिया, और कावेरी के किनारे पे, गोदावरी के किनारे पे, कावूर में रामानंद राय के मुंह से प्रयोजन ज्ञान बुलवाया उन्होंने, ये उनकी लीला है। सनातन गोस्वामी के मन में ये भाव नहीं है कि मैं महाप्रभु को इंस्ट्रक्ट करूंगा, उनको गाइड करूंगा, एक जनता को बोध दे रहे हैं वो उनके माध्यम से कि ब्रज में साहब बनकर जाना नहीं चाहिए, ब्रज में नम्र बनकर जाना चाहिए, ये उनके मुंह से वो दिखा रहे हैं। ऐसा रहता ना, ये भगवान और भक्त जो होते हैं ना, वो उनके बीच में होती है कॉम्पिटिशन। भगवान भक्त का गौरव करना चाहते हैं और भक्त भगवान का गौरव करना चाहते हैं, तो उस कॉम्पिटिशन में जो ज्ञान खुद देना चाहिए वो भगवान अपने भक्त के मुख से दे रहे हैं और खुद को भी नम्र पोजिशन लेके वो सुन रहे हैं। अब ईश्वरपुरी कौन है? वो तो सच्चिदानंद आत्मा है, उनको उन्होंने गुरु बना लिया, है ना। तो अभी आप बोलेंगे क्या अधिकार है जीव को भगवान का गुरु बनने का, संदीपनी को क्या अधिकार था कृष्ण का गुरु बनने का? नहीं, भगवान की इच्छा थी, भगवान ने बताया कि आपको बनना है, मेरे ड्रामा में आपका रोल ये बताया कि नहीं रोल बताया। तो वो भगवान ने जो ड्रामा बनाया है पूरा लीला का, उसके सब रोल बांट के दिए हैं, तो वो उनको करना पड़ता है, और वो भी एक अहम भाव से नहीं करते वो रोल, नम्र भाव से करते हैं। तो सनातन जी उनको बता रहे हैं, तो ये नहीं बताया देखो देखो महापुरुष से बढ़कर मैं हूँ, उनको भी आदेश दे रहा हूँ, मेरी कितनी बड़ी पोजिशन, ये उनका भाव नहीं है, वो तो सेवक के भाव में कर रहे हैं। ऐसा है, यस सर। हाँ हाँ, इसका सार है, इसका प्रश्न ये ना आपका सार यही है कि भगवान का शारीरिक सान्निध्य होना ये परम गति नहीं है। भगवान के साथ में होने पर भ्रमित हो सकते, वो था ना वो क्या नाम था उसका, काल कृष्ण, छोटा हरिदास था, काल कृष्ण ही था, भगवान के संग में रहते हुए भी वो भ्रमित हो गया था ना पूरा। तो भगवान बताना चाहते हैं कि भगवान का शरीर से संग होने से परम सिद्धि प्राप्त होगी ऐसी गारंटी नहीं है, भगवान की चेतना होनी चाहिए, वी हैव टू बी गॉड कॉन्शियस नॉट गॉड क्लोज फिजिकली, दैट्स नॉट द गोल ऑफ लाइफ। इवन दुर्योधन भगवान के बहुत पास था ना, नहीं था उनका रिश्तेदार था भगवान का, वो भगवान ने विराट रूप भी दिखाया उसका, इतना पास था वो, जो विराट रूप देख के भीष्मदेव द्रोणाचार्य सबके मन में भक्ति जागृत हो गई, और वो क्या बोला, ये तो जादूगर है, उसको पकड़ो अरेस्ट करो उसको। तो भगवान का सामने होने से कुछ नहीं होता है, चेतना होनी चाहिए, चेतना चेतना सही होगी तो भगवान दूर होने पर भी पास बने। जो कंस भी था भगवान का मामा, क्या भावना थी उसकी, कहाँ गया वो, और गोपियां ब्रज में थी और भगवान द्वारका में, और कहाँ कहाँ थे, उद्धव जी हैरान हो गए उनको देखकर, अरे मैं तो इतने पास बैठता हूँ उनके, लेकिन मेरी क्या स्थिति है उनके पास में रहते हुए भी, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, जो इस स्थिति में ये है, ये तो मुझसे करोड़ों गुना भगवान के पास में, शरीर से यहाँ पर है और करोड़ों गुना भगवान के निकट है ये, इसलिए भगवान के शरीर के निकट का पोजिशन छोड़ दिया उसने, और दोबारा रिटायर हो गए वो द्वारका के नौकरी से, रिटायर हो गए और ब्रज में आके बस गए, बोले हमको तरुण का पत्ता बनना है, मतलब कहाँ थे वो फिजिकली, कहाँ पर थे और कहाँ पर आ गए फिजिकली, और स्पिरिचुअली कहाँ पर थे और कहाँ आ गए। तो यही है चीज़, शरीर का सान्निध्य जो है ना वो अल्टीमेट नहीं है, तो दैट इज वाई गौड़ संप्रदाय में हम लोग भगवान के निकट रहने की अपेक्षा नहीं करते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सामिप्य। एक मुक्ति है ना सामिप्य, जो भगवान के साथ सान्निध्य में रह सकते हैं आप। अरे सामिप्य क्यों चाहिए अपने को, ना हमको शास्त्री चाहिए, ना हमको सायुज चाहिए, ना हमको सालोक्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, भगवान के पास में रहना, भगवान के जैसा रहना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, उनके जैसा रूप धारण करना, ऐसा हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या बोलते वो, मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवतात भक्तिर अहै तुकी त्वई, जहाँ पर भी रखो, नरक में रखो, जन्म पृथ्वी पर रखो, मनुष्य में रखो, प्राण जानवर बना कर रखो, कहीं भी रखो, आपकी अहै तुकी भक्ति प्राप्त होती रहे, यही हमारी एकमात्र कामना है। गोपिया भी कहती है कि अगर हमारे होने से एक क्षण भी थोड़ा सा दर्द भगवान का कम हो जाए सर का, तो उसके फल के रूप में हम लोग अनंत काल तक नरक भोगना पसंद करेंगे, मतलब दूर रहेंगे ना भगवान से, वो है कि नहीं। फिर वो क्या बोल रहे हैं, हमारी तरफ सेवा होनी चाहिए भगवान की, और जिस रूप में हमको सेवा करनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस रूप में वो सेवा चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको जिस रूप में सेवा लेना है उस रूप में सेवा हमको मिलती रहे बस, और उस रूप में हम सेवा करने में उद्युक्त रहे हमेशा, ये भक्त की भावना होती है। ऐसा भी नहीं कि हम लोग गोलोक में ही जाना है, हमको सखी बनकर रहना है, हमको उनके पास में ही रहना है, हमको हमेशा उनको देखते रहना है, ये भक्तों को, ये कोई भी अपेक्षा भक्त नहीं करता है। मतलब एक ओनली वन थिंग, निरपेक्ष सेवा, नो कंडीशन अटैच्ड, देयर इज नो स्टार देयर, हाँ कंडीशन अप्लाई ऐसा नहीं रहता है उनका, देयर इज नो कंडीशन अप्लाई, इट इज अनकंडीशनल विथ नो इंटरप्शन, कंटिन्यूअस इज देयर, अहैतुकी अप्रतीयता, नो कंडीशंस एंड नो गैप इन बिटवीन, ऐसा है। तो बल्लभद्र भट्टाचार्य भ्रमित हो गए, काल हो गए, बहुत सारे लोगों का कथा है ऐसी, सार उसका एक ही है। जैसे कि होता ना वो खटमल वो राजा के सिंहासन पर बैठता है, क्या फायदा है उसका? जब तक उसकी चेतना खून चूसने की है तब तक वो राजा के सिंहासन बैठकर भी क्या लाभ है उसको? हाँ, इज नॉट गोइंग टू बिकम किंग सिटिंग ऑन द किंग। जब तक खटमल की चेतना है तब तक खटमल ही बना रहेगा वो, जगह से कोई मतलब नहीं है। भावना क्या है आपकी? भगवान रिझते हैं भाव पे, आपके पद पे रिझते नहीं वो। और आपका कोई रिश्ता नहीं, अभी उनका रिश्ता क्या था, नरकासुर का बेटा था, राक्षस था तो वध कर दिया उन्होंने, और बाकी कितने लोगों के बेटे नहीं थे, उनसे प्रेम कर दिया उन्होंने, क्या ना कितना एग्जाम्पल दे दिया, क्या क्या बताया आपको भी? तो भगवान वो सब फिजिकल कंडीशन में बंद नहीं होते हैं, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा मामा है, ये मेरा पुत्र है, जो भी उनसे प्रेम करता है उन पर वो प्रेम करते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो, उनके संग में हो या ना हो। हाँ, इतना द्वारका में गए वो कभी भूले नहीं, वो गोपियों को, माता को कभी भूले नहीं, दिन रात याद करते थे गोपियाँ, अपना पत्नियाँ परेशान थी, वो क्या है क्या हमारे अंदर क्या कमी है, बार बार ललिता विशाखा यशोदा उनका ही नाम जपते रहते हो द्वारका में रहकर, हम लोग इतना भोजन करते हैं, हमारी सेवा में कुछ कमी है क्या? हाँ, इतना दूर रहकर भी कभी भी वो बोलते हैं कि मैं किसी को भूल नहीं पाया, कभी भी एक ब्रिजवासी को भूल नहीं पाया, माता पिता के तो बात दूर रही, किसी को नहीं भूल पाए, वो तड़पते रहे, रोए वो रोए, और उनके रोने से अश्रु की नदी बनी वहां पर घूमती, केवल ब्रज की याद में और ब्रजवासियों की याद में। तो वो स्वयं भी फिजिकल स्थिति को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो भी भाव के भूखे हैं, जहां पर भाव है वहीं पर वो है, क्योंकि भाव है तो आपके हृदय में वो है, और भाव नहीं है तो आप मंदिर के पुजारी भी होंगे तभी आपके साथ में नहीं है। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कॉन्शियसनेस। पूरा भक्ति का जो मामला है ना, पूरा चैप्टर जो है वो पूरा इस चेतना पर आधारित है, कहाँ चेतना है आपकी, वेयर आर यू इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज वेयर द लॉर्ड इज। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? यस रवि। शॉर्टकट की ज्यादा अपेक्षा मत करना नथिंग इज शॉर्टकट हियर, शॉर्टकट दिया हुआ है लेकिन आपको प्रयास तो करना ही है। प्रेम भक्ति अभी क्या मुझे पता नहीं तो क्या बताऊं आपको मैं तो खाली नोट बनाया है, बोल रहा हूँ बस, दैट पर्सन आई डोंट हैव रियलाइजेशन। बट इवन थ्योरेटिकली अगर कहा जाए तो निरपेक्ष समर्पण भगवान के लिए वो प्रेम है, जो किसी चीज पर आधारित नहीं है, कोई भौतिक अवस्था उसको कंडीशन नहीं है उसकी, कोई भौतिक स्थिति उसका कंडीशन नहीं है, उसका रीजन नहीं है, तो निरपेक्ष प्रेम, निरपेक्ष भावना जो भगवान के प्रति समर्पण की होती है तब प्रेम होता है भगवान से, उसी को भगवान देखते हैं बस। और भगवान को कोई कोई चीज़ में आकर्षण नहीं, क्योंकि सब चीज़ उनका दिया हुआ है, आप बाकी कुछ भी चीज़ दिखाओगे उनको वो सब उनका ही दिया हुआ है, केवल जो प्रेम की भावना है, सेवा भावना है, वो केवल आपकी है, और वो पैदा करना है उनको। एक्चुअली वो आपके अंदर है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर नहीं है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम विद्याति कामान, ये आपका नेचर है कि आप हमेशा भगवान के सेवक हो, हमेशा भगवान से प्रेम करने वाले हो, लेकिन जो कि भूल चुके हो अहम की वजह से, अपने सेवा भाव की चेतना को आप कवर कर चुके हो। अभी भगवान का नाम जो आसान शॉर्टकट आपको दिया गया है ना, उस आसान शॉर्टकट से उसको दिलो जान से अपना कर उस कवरिंग को हटा देना है आपको, आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको नाम का जप करना है बस, कोई ज़्यादा डेप्थ में समझने की जरूरत भी नहीं है, केवल श्रद्धा से इस नाम का जप करो आप, जो जो आपके लिए जरूरी है वो सब सब पैदा हो जाएगा उसकी वजह से, आपका मूल स्वरूप जो है वो जागृत हो जाएगा, स्वरूप सिद्धि हो जाएगी आपकी केवल नाम के माध्यम से। ऐसा फॉर्मूला है जबरदस्त, क्योंकि हम लोग जैसे कलयुग के पतित जीवों को प्राप्त हुआ है, बंदर को मोती मिला हुआ है, ऐसा है। तो उसको बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू से क्या कर रहा था कि समझने का प्रयास करो कि क्या प्राप्त हुआ है तुमको, वॉट यू हैव रिसीव्ड, वो समझेंगे तो अपने आप प्रेम पैदा हो जाएगा, और उस प्रेम के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। प्रेम ऐसा नहीं होता है प्रेम के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, तब जाकर प्रेम होता है। बिना त्याग का प्रेम नहीं हो सकता है, बिना सेवा का प्रेम नहीं हो सकता है। फर्स्ट सर्विस सैक्रिफाइस देन लव विल कम। ओके, तो कुछ समाप्त करें, थोड़ा कीर्तन करेंगे या समाप्त करेंगे। हाँ, श्री श्री गौनिथाय की जय। नहीं ऐसे करें, आरती भी करेंगे आप करो कीर्तन, मैं आरती करूँगा ना, आप गाओगे ना, गाओ एक मिनट ना, इसको निकाल देता माइक को, मेरे माइक को निकाल देता हूँ, हर बार मैं आयो तो सर्गरी ना, इस टाइम आयो रिकॉर्डिंग।
हरे कृष्णा।